ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था, तेरह एक 1967 इस समय चक्र को अभी ड्रामा की सूरत दे दी है ना। बच्चे जान गए हैं कि अभी हम पार्ट भी बजा रहे हैं, इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट भी बजा रहे हैं और साक्षी होकर के सारे ड्रामा का पार्ट देखते भी हैं। जब ड्रामा है तो इतना कोई क्षोभ नहीं होता है, दुख नहीं होता है, जास्ती दुख नहीं हो सकता है क्योंकि जो ड्रामा है। दुनिया में जो बात दिल में कोई के भी नहीं है वो बात बच्चों के दिल में है, इसलिए बच्चे अपनी खुशी में हैं। ये दूसरे कोई को भी आने वाली भविष्य की दुनिया की खुशी तो नहीं है, भले भविष्य के लिए कोई ने दान पुण्य जास्ती किया हो और उसे खुशी हो कि मुझे अच्छा पद मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे भी तो दिल समझती है ना। क्योंकि निष्काम सेवा तो कोई करते नहीं है, कामना रहती है कि हमने दान किया तो अगले जन्म में हमें इसका फल मिलेगा। वो ये जानते हैं कि अच्छा काम करने से हमको अच्छा जन्म मिलेगा, ये जो भी दुनिया में रिलीजियस माइंड होते हैं ना, वो कुछ न कुछ दान पुण्य तीर्थ वगैरह करते हैं बच्चे, इसलिए करते हैं कि भविष्य में अच्छा जन्म मिले नई दुनिया में। इसलिए तुम बच्चों को भी खुशी होती है, दूसरे मनुष्यों को तो बेचारों को कोई खुशी नहीं होगी कि अभी नई दुनिया आने वाली है, अगर उनको कुछ मिलता भी है तो हद की खुशी है कि इस जन्म में दान पुण्य करते हैं तो अगले जन्म में एक जन्म में मिलेगा। और तुमको जो मिलना है वो तो है बेहद की खुशी, क्योंकि तुम जानते हो हमको तो 21 जन्म की खुशी मिलती है, और 21 जन्म के आधार पर और भी खुशी मिलती है। अगले जन्मों की बाकी दुनिया में भले समझो या किसको धंधा करते हैं, बाल बच्चे बहुत हैं, उनको कोई वक्त में बहुत फायदा होता होगा, तो खुशी तो वो भी है हद की। और ये है तुम्हारा बेहद का धंधा, क्या? ईश्वरीय सेवा का। तो तुमको हद की खुशी या बेहद की खुशी? इसलिए हद की खुशी की तुम परवाह नहीं रखते हो, परवाह ही नहीं रखी हद की खुशी की, जबकि तुमको मालूम पड़ा है कि बेहद के बाप से हमको बेहद का मिलता है, तो फिर हद की खुशी की क्या दरकार है? वो हद की खुशी की इतनी परवाह नहीं करनी है। मान लो लौकिक दुनिया में कोई का बाप है, लखपति करोड़पति है, तो वो हद की खुशी है बच्चे को या बेहद की खुशी होनी चाहिए? है? अच्छा, लौकिक बाप का बच्चा लखपति करोड़पति और उसके बच्चे को बेहद की खुशी होगी, वो तो हद की खुशी है ना एक जन्म की, और यहाँ तो बेहद के बाप से बेहद 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो हमारी है बेहद की खुशी। और इस बेहद की खुशी में भी तो पुरुषार्थ सभी को करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं है कि बेहद की खुशी पाने वाले पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, करते हैं ना? ऐसे तो कोई को कहा नहीं जाता है कि तुमको बेहद की खुशी मिली है इसलिए पुरुषार्थ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे जबकि शरीर निर्वाह के लिए गृहस्थ व्यवहार चलाना है तो फिर तो पुरुषार्थ करना ही पड़े ना बच्चे, आमदनी के लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। तो एक तरफ है हद की आमदनी के लिए पुरुषार्थ चल रहा है और दूसरी तरफ में बेहद की आमदनी के लिए भी पुरुषार्थ चल रहा है, किनका है? किनके लिए बोला? उनके लिए बोला जिन्होंने अभी हद की दुनिया की प्राप्ति का या हद की दुनिया की जिम्मेवारी का पूरा छोड़ने का फैसला नहीं किया है, तो उनके लिए कहते हैं कि दोनों तरफ तोड़ने बाओ, हद की दुनिया में भी तोड़ने बाओ और बेहद में भी तोड़ निभाओ। यहाँ कोई हद की आमदनी के लिए मना नहीं किया जाता है, है? कोई को मना किया जाता है नहीं। मना नहीं करते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है और उनकी पालना करनी है तो छोड़ दो। किसके लिए बोला है? जो ईश्वरीय सेवा के लिए पूरे समर्पित हो चुके हैं उनके लिए बोला, या जो पूरे समर्पित नहीं हुए हैं उनके लिए बोला? उनके लिए बोला कि दोनों तरफ तोड़ निभाओ। सहज राजयोग है ये, कोई कठिन राजयोग नहीं है। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। हद के संबंधियों से मना ना करना कि हम ईश्वरीय सेवा में जा रहे हैं जीवन भर के लिए, तो आप अपना संभालो, हम नहीं संभालेंगे। अब तो ये भी मांगना हुआ या नहीं मांगना हुआ है? नहीं मांगना हुआ। क्योंकि हद में भी पूर्व जन्म का हिसाब किताब से बंधन तो होता है ना। सब कोई निर्बंधन नहीं होते हैं, बहुतों को बंधन भी होता है। या जो रचना रची है उस रचना का पालना का भी बंधन है कि बीच में छोड़ देंगे है, पूछना नहीं पड़े, बिना पूछे भाग जाएंगे है? नहीं, वो तो सन्यासी भागते हैं। हम कोई सन्यासी हैं क्या? हम तो प्रवृत्ति मार्ग के बाप के बच्चे हैं। बाप प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखाने आए हैं। तो साथ साथ में वो भी करना है और ये भी करना है। वो हद का है, उस हद में भी अटेंशन देना है। उससे जाती फिर किससे? हद से। हद से जाती फिर अटेंशन इसमें देना है। क्यों? दोनों में तोड़ निभानी है तो बराबर बराबर रखे ना है। बेहद में जास्ती अटेंशन क्यों देना है? हाँ, क्योंकि हद है एक जन्म के लिए, बाकी तो यही हिसाब किताब पूरा करना है ना। और बेहद है अनेक जन्मों के लिए, हद है इस देह से कनेक्टेड, देह के संबंधियों से कनेक्टेड, एक जन्म के लिए। देह अगले जन्म में जाएगी क्या? नहीं। और आत्मा, आत्मा का अनेक जन्मों से कनेक्शन है। तो अनेक जन्मों की प्राप्ति का ध्यान रखते हुए जो बेहद का बाप है, अनेक जन्मों की प्राप्ति कराता है, उस तरफ बुद्धि का पलड़ा भारी होना चाहिए, बुद्धि रूपी पांव का दबाव ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बाकी हद में अगर जास्ती आ जावे तो भी कोई हर्जा नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जास्ती भी आ सकता है ना, तो दान पुण्य भी कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। और यहाँ भी ऐसे ही है, ईश्वरीय सेवा अर्थ कोई जास्ती करते हैं, कोई जास्ती नहीं भी करते हैं। कोई को पैसा मिलता है तो थोड़ा कंजूसी से काम करते हैं, कोई होते हैं ना कंजूसी से चलाते हैं, कोई साहूकार होते हैं वो अपना हिसाब किताब तो रखते हैं ना। क्या हद में भी साहूकार हिसाब किताब तो रखते हैं ना, तो यहां करने से हमको बेहद का मिलेगा। कहां? इस ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मणों की दुनिया में, या हम जो ईश्वरीय सेवार्थ दान पुण्य करेंगे तो हमको बेहद का मिलेगा, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है और वहां हद में करने से हमको थोड़ा मिलेगा, क्योंकि एक जन्म का हिसाब किताब है। तो ये पक्का ज्ञान जब होवे ना तो फिर कोई अच्छी तरह से, तो कोई बच्ची पैसे वाली होती है तो भी दान पुण्य नहीं करती है, कंजूसी का भाव रहता है। ऐसे बहुत पैसे हैं और एकदम जैसे मनहूस, कोई गरीब को देखेगा भी तो देगा नहीं कि इसको जरूरत है तो इसको देना चाहिए, नहीं देगा। ऐसे कोई साहूकार होते हैं, नहीं देते। तो शिव बाबा अपने सेठ हैं, क्या उन साहूकारों से शिव बाबा की भेंट की? क्या भेंट की? कि शिव बाबा तो अपना सेठ है। सेठ कहते हैं ना, ताराचंद की बात कहते कि सिर्फ गिनता रहता था,
लाख है, करोड़ है, गिनता था। कोई आएंगे ताराचंद जी के पास, कन्या का विवाह करना है, कन्या को देना है, कहेगा कन्या को तुमने जन्म क्यों दिया, जो हमसे भीख मांगने आ गए। हमको हैरान करने के लिए आ गए, पैसा लेने के लिए। ऐसा भी बोल देते थे, और कोई तो देवता कैसे शाह होते हैं, कौन देवता, लेवता नहीं, कोई तो देवता ऐसे शाह होते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं। तो इस बेहद की सेवा में भी देखा ऐसा ही है, क्या कोई कंजूस है और कोई में शाह बनने के संस्कार हैं। जितना जितना दान मिलता है बाप से, हमको ईश्वरीय सेवा में करने के लिए मिलता किससे है, है? बाप से जितना जितना भी दान मिलता है शाह होकर के सभी को देना चाहिए। परंतु यहाँ भी ऐसे हैं, ऐसे सरेंडर्ड बहुत हैं, बाप की ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हुए हैं, बाप से उनको मिलता भी है बहुत, लेकिन उनमें भी दो तरह के हैं। कैसे, कोई बहुत कंजूस हैं, करारे करारे जवाब दे देते हैं, और कोई शाह के संस्कार के हैं, कोई जरूरतमंद आया है, ईश्वरीय सेवा के हिसाब से आया है। लौकिक दुनिया के धंधे के हिसाब से नहीं, तो कुछ न कुछ शाह बन के देते हैं। तो बाप कहते हैं सभी की खुशी से संभाल करनी चाहिए। संभाल मन, कोई बीमार होता है ईश्वरीय परिवार में, बीमार होने से ईश्वरीय सेवा छूट गई और उसको तड़पन हो रही है कि हमारा तो सारा टाइम बर्बाद जा रहा है, हम तो ईश्वरीय सेवा भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कोई बीमार धीमार है, जरूरतमंद है, तो उसकी संभाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है? करनी चाहिए। ऐसे थोड़े ही कि जवाब दे दो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, बीमारी धीमारी तुम अपना भुगतो। हम ईश्वरीय हिंदू में से एक भी पैसा देने वाले नहीं है। अरे जिनके संभाल की जिम्मेवारी तुम्हें मिली है, मिलती है ना, तो जिनके संभाल की जिम्मेवारी मिली है उनको जरूरत है बीमारी धीमारी में, तो फिराक दल से उनकी सेवा करनी चाहिए ना, संभाल करनी चाहिए ना, खुले दिल से संभाल करनी चाहिए। तुम बच्चों को भले बीमारी सीमारी तो है ही कर्म भोग, वो तो तुम जान गए हो। क्या तुम जान गए हो? बीमारी धीमारी ये कर्म भोग का हिसाब किताब है पूर्व जन्म का, तुम जान गए हो। ये भले न जानते हो, कौन? ब्रह्मा बाबा और इनके फॉलोअर्स, क्योंकि ये तो विदेशियों के प्रभाव में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। क्या विदेशियों के प्रभाव में, उनके प्रभाव में आकर के उनके कर्म कांड करने लग पड़ते हैं या नहीं है? करने लग पड़ते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। इनका तो पार्ट है ही माता का, माताएं ज्यादा प्रभाव में आती हैं या तुम रुद्रमाला के मणके ज्यादा प्रभाव में आवेंगे? क्यों क्यों है बंधन नहीं? भारत है ही मातृ प्रधान देश। क्या और जो विदेश हैं वो मातृ प्रधान नहीं है? यहाँ की मोस्टली मनुष्य आत्माएं माता के संस्कारों की हैं। क्या माता के संस्कार हैं? तो माता के संस्कार होने के कारण जो भारतवासी हैं वो दूसरे धर्मों के प्रभाव में आवेंगे या नहीं आवेंगे? हैं? हिस्ट्री क्या कहती है? भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं या दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट होते हैं? भारतवासी ही कन्वर्ट हुए हैं। और जो कन्वर्ट हुए हैं वो कन्वर्ट होने वाले बाप के तुम बच्चों जैसे बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला के रुद्राक्ष मण के हैं या आधार मूर्त धारणा मूर्त जड़े हैं? क्योंकि हर धर्म पिता हर एक पिता अपनी धारणाएं अपने परिवार में स्थापन करने के लिए पहली पहली जो रचना रचता है वो कौन होती है? माता। तो माता के संस्कार उन जड़ों में हुए जिनका आधार लिया जाता है, पिता बीज हो गया, तो तुम बच्चे क्या हो? है माता के संस्कार धारण करने वाले हो जन्म जन्मांतर या पुरुष संस्कार धारण करने वाले हो? पुरुष संस्कार धारण करने वाले हो। इसलिए बोला कि तुम जानते हो पूर्व जन्मों की बात, तुम्हारी बुद्धि में झट से आ जाती है, ये नहीं जानते उतना। क्यों? क्योंकि इनका पार्ट कैसा है? है? इनका पार्ट भी कैसा है? माँ का पार्ट। और इनको फॉलो करने वाले पक्के पक्के जो हैं उनका पार्ट भी कैसा होगा? माता का ही पार्ट होगा। तो प्रभावित होने का पार्ट है किससे? विदेशियों से। तो तुम जानते हो पूर्व जन्म की बात, तुम्हारी बुद्धि में से पूर्व जन्मों का हिसाब किताब की बात हटती नहीं जल्दी, और इनकी बुद्धि में ज्यादातर ऐसे हैं इनके फॉलोअर्स जिनकी बुद्धि में ये रहता ही नहीं कि हमारा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इनकी गोद में खेलने वाले ज्यादातर नौकुरी के जो ब्राह्मण गाये हुए हैं उनमें से ढेर के ढेर ऐसे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। इसलिए अनेक जन्म प्रभावित होने के कारण उनमें वो विदेशियों के संस्कार पुनर्जन्म को न मानने के रहते हैं या नहीं रहते हैं? है? रहते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं आता क्या कि पूर्व जन्म का हिसाब किताब हो सकता है, और तुम्हारी बुद्धि में है जल्दी से आता है। तो न इनकी बुद्धि में आता है और न उनकी बुद्धि में आता है, उनकी माने विदेशियों की बुद्धि में भी नहीं आता, इनकी बुद्धि में भी नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती है। क्या क्या आती है? हाँ, तुम बच्चों को भले बीमारी सीमारी तो होता ही है कर्म भोग, वो तुम बच्चे जान चुके हो। क्या तुम बच्चे जान चुके हो? माने पहले नहीं जानते थे? है? पहले हम भी नहीं जानते थे। क्यों क्यों नहीं जानते थे? कि हम तो इस सृष्टि की बीज रूप आत्मा है। बीज ज्यादा पावरफुल होता है या पत्ते टहनियां फल फूल ज्यादा पावरफुल होते हैं? तो हम बीज रूप आत्माओं का आखिरीन इस सृष्टि में क्या हिसाब है? तुम क्या समझते हो अपन को? बेहद के बाप का बेहद का बच्चा समझते हो या हद का बच्चा समझते हो? बेहद के बाप का बेहद के बच्चे पहले पहले हम हैं, उसके बाद चंद्रवंशी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि। हम बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो इस सृष्टि में तुम्हारी जो जमात है वो ज्यादा पुरानी है या औरों की जमात ज्यादा पुरानी है? तुम्हारी जमात ज्यादा पुरानी है। तुम बड़े या और धर्म में आने वाले फॉलोअर्स या उनके फादर्स बड़े? तुम बड़े पक्के सूर्यवंशी? तो जो बड़े होते हैं बड़े बाप के बच्चे वो अगर कुसंग में आ जाएं और छोटे मोटे बापों के बच्चे हों वो कुसंग में आ जाएं, तो दोनों तरह में से बच्चों में से कौन ज्यादा बिगड़ेंगे? है बड़े आदमी के बच्चे जास्ती बिगड़ेंगे। तो तुम तो बहुत ही बिगड़ गए थे। क्या क्या बोला? तुम तो बहुत ही बिगड़ गए थे, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है और तुम्हारा भी वो पहले बाप है। कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप कौन? प्रजापिता। वो सबसे जास्ती बिगड़ेल या कम बिगड़ेल? है सबसे जास्ती बिगड़ जाता है। पतितम कामी कांटे में मैं आता हूं और भी बोला, ब्रह्मा के मुख से ही बोला, वेदवाणी में बोला। वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है ना, उसमें बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है।
क्या?
भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक माने ना आस्था। इस दुनिया में कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उसको पूरा आस्था हो, विश्वास हो, निश्चय हो, कोई के ऊपर आस्था नहीं। जब आस्था ही कोई के ऊपर नहीं है तो नास्तिक ही हुआ ना है? जैसे क्रिश्चियंस में रशिया के लोग हैं, रशियंस जिन्होंने एटमिक एनर्जी तैयार की, उनको गिरजा घर पर आस्था है, क्राइस्ट पर आस्था है, बाइबल पर आस्था है, है? हेवनली गॉड फादर के हेवन पर आस्था है, हेवनली गॉड फादर को मानते हैं, है? नहीं मानते। आत्मा को मानते हैं, नहीं मानते। कोई पर जैसे उनको आस्था नहीं तो उनका भी कोई बाप इस सृष्टि पर होगा या नहीं होगा है? वो कौन होगा? एक ही बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, जो सब धर्मों की धारणाओं को अपने में वो बीज धारण करके रहता है। क्या? कोई धर्म ऐसा नहीं है। अधर्म हो, नास्तिकी ही क्यों न हो, उनकी भी कोई जमात में ऐसी आत्मा नहीं है जिसका बीज संस्कारों का उस प्रजापिता में न हो, और हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। क्या? हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं, क्योंकि हमने ही पहले उसको पहचाना कि दूसरे धर्म वालों ने पहचाना, या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों ने पहले पहचाना है? हमने पहचाना। तो ये बातें कर्म भोग की तुम बच्चे जान चुके हो, न ये न इनके फॉलोअर्स और न वो और न उनके फॉलोअर्स। वो माने कौन? विदेशी। शरीर में कोई बहुत कलेश होता है तो थोड़ा दुख जास्ती भासता है, तो वो शरीर के अंदर जो कलेश आया बीमारी का या भूत प्रेत आदि का, वो तुम समझ सकते हो ये क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो? क्या समझ सकते हो? ये पूर्व जन्म का कोई न कोई हमारा हिसाब किताब है। बीमारी बीमारी का हिसाब किताब हो या भूत प्रेतों का कोई चक्कर हो, तो उन आत्माओं के साथ भी हमारा हिसाब किताब है। हमने उनको तंग किया होगा तो वो आकर के हमको तंग कर रही है। भाई आत्मा को पूर्व जन्म का भोग तो भोगना ही है ना, भोगना है ही, मन दुख सहन कर रहा है ना बच्चे, ये समझ है कि अभी ये दुख हमको भोगना है। परंतु ये है पिछाड़ी का, ये भी जानते हो क्या? ये जो पूर्व जन्मों का दुख हमको भोगना है ये पिछाड़ी का है, बीच का है या आदि का है? हैं? बीच का है तो भी लंबे समय तक चलेगा, आदि का है तो पूरा ड्रामा भोगना पड़ेगा, और अंतिम जन्म का है तो बस सिर्फ एक जन्म यही भोगना है ना, कि आगे के जन्मों में भोगना है? हैं? इसी जन्म में भोगना है अंतिम जन्म। भले भले ये हिसाब किताब खलास हो जावे, क्या चाहते हो? बीमारी ढीमारी का जो हिसाब किताब आया, भूत प्रेत का जो हिसाब किताब आया भोगने के लिए, वो खलास हो जावे भोग करके, वो अच्छा, या कुछ रह जावे बीच में इसको हम स्टॉप कर दें, वो अच्छा, भोगना जो है सो हो जाए, क्या हम घबराने वाले नहीं है? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। 13:67 की वाणी का रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो जो कुछ भी हिसाब किताब रहा है, कहा जाता है वो खलास हो जावे, और जरूर रहा है पिछले जन्मों में तो तंग कर रहा है, कहा है भले खलास हो जावे, ऐसे समझने से कोई भोगते भी है, है? हिम्मत से भोगते हैं या रो रो के भोगते हैं? है? हिम्मत से भोगते हैं तो कोई खुशी से भी भोगते हैं, है? क्या खुशी, क्या खुशी? अरे कोई के ऊपर कर्जा है और कर्जा वो चुकाता है, ढेर सारा कर्जा चुकाए दिया, थोड़ा बहुत रहा हुआ है, तो कर्जा चुकाने वाले को भी खुशी होती है या नहीं होती है? हाँ खुशी होती है, कच्चे होते हैं, तो कोई बहुत नाराज होकर के भी भोगते हैं। अरे हम भगवान के बच्चे बने, भगवान के घर में भी रह करके हमको इतना दुख है? कहते हैं राम राज्य आने वाला है, राम आया हुआ है रावण राज्य खलास करने के लिए, तो हमारा दुख खलास नहीं कर सकता है? कर सकता कि नहीं कर सकता है? ये कर्मों का हिसाब किताब कोई भी खलास नहीं कर सकता, हमने कर्म किए हैं तो भोगेगा कौन? हमें ही भोगे, ये तो भक्ति मार्ग में भी पढ़ते आए हैं, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ देखा है? तो कोई कच्चे होते हैं, नाराज होकर के भुगते हैं। किससे नाराज होकर भुगते हैं? हैं? बाप से ही नाराज हो जाते हैं। अरे हम भक्ति मार्ग में चलते थे तो गुरु हमें आशीर्वाद देते थे, हम ठीक हो जाते थे, हैं? और यहाँ आकर के तो देखो हम कितने दुखी हो रहे हैं, इससे तो अच्छे हम बेसिक नॉलेज में बढ़िया थे, बेसिक नॉलेज में अच्छे थे, इतना सहन हम तो नहीं करना पड़ता था, और यहाँ तो ये खत्म ही नहीं होता। तो देखो तुम बच्चे तो बड़े फायदे में हो, क्यों क्यों फायदे में हो? क्योंकि तुम्हें बाप से क्या मिल गया? जानकारी मिल गई पूर्व जन्मों की, क्योंकि तुम बच्चों को अगर अच्छी सर्विस करें तो तुम्हें पता है कि हमें राजधानी में जरूर अच्छा पद मिलेगा, और राजधानी इसी जन्म में स्थापन होनी है या अगले जन्म में स्थापन होनी है? तुम बच्चे इस बात को समझ गए हो, न वो समझते न उनके फॉलोअर समझते। वो क्या कहते हैं है? यहाँ हम कर्म करें, अगले जन्म में हम राजधानी में सुख भोगेंगे, वो ऐसे समझते हैं। जबकि बाप ने मुरली में साफ कह दिया कि जब बाप आते हैं जिसकी यादगार में तुम बच्चे आत्माओं के बाप की यादगार में जब बाप आते हैं उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो आते ही दत्त से राजधानी स्थापन कर देते हैं। क्या? आते ही दत्त से राजधानी स्थापन कर देते हैं, इसी जन्म में या अगले जन्म में? इसी जन्म में, एक ही बार तो आते हैं। तो सवाल पैदा होता है, आए हैं या नहीं आए हैं? है? आए हैं। अरे दो बातें हो गई, बाप आते हैं तो आते ही दत्त से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देते हैं, दूसरी बात बोली बाप आते हैं तो एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति दे देते हैं, और अभी ये क्या बात हो गई है? आए कि नहीं आए? हैं? आए हैं, फिर दत्त से राजधानी स्थापन नहीं की? झूठा है, है? बाप झूठा है या नहीं झूठा है? अरे जैसे धर्म पिताएं हैं दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो प्रभावित होने के कारण फिर उल्टी बात बोलते हैं। और हमारा बाप बेहद का बाप किसी से प्रभावित होता है क्या? क्यों प्रभावित नहीं होता है? किसका बाप है? सबका बाप है, कीड़े मकोड़ों का? हाँ है, मनुष्य आत्मा का बाप है, है? मनुष्य प्रभावित नहीं होते, बाप प्रभावित नहीं होते, तो किसका बाप है? हमारा बाप। हम कौन है, है? ये कोई बात नहीं हुई कि हमारा बाप है इसलिए प्रभावित नहीं होता, औरों का बाप होता तो प्रभावित होता। प्रभावित माना प्रजा, प्रभावित हुआ माना प्रजा है। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स, ब्रह्मा बाबा भी, ज्ञान चंद्रमा प्रभावित होते हैं या नहीं है? चंद्रमा पर भी परछाया धरणी रूपी पृथ्वी का पड़ता है या नहीं? तो उतना हिस्सा काला हो जाता है, प्रभावित होता है कि नहीं? परछाया पड़ता है। तो ये सब धर्म पिताएं प्रभावित होते हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवताओं का जो बाप है, आदि सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है कौन? है कौन? मनुष्य सृष्टि का वो बाप जो ब्रह्मा की पहली औलाद कहा जाता है, मानसी सृष्टि से उत्पन्न कौन? सनत कुमार, जिसके नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ता है, आदि सनातन धर्म, वो धर्म सब धर्मों का आदि, उससे पहले कोई और धर्म नहीं हो सकता जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़े। तो हमारा धर्म पिता कौन हुआ? सनत कुमार। योगीश्वर कहते हैं, ज्ञानेश्वर कहते हैं, योगियों का ईश्वर, ज्ञानियों का ईश्वर, और भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगी राज। शंकर को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगीश्वर। तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, ज्ञानेश्वर। तो क्या तीन तीन ईश्वर होते हैं? ज्ञानियों के ईश्वर, योगियों के ईश्वर, ईश्वर एक होगा या तीन तीन होंगे? तो इसे क्या साबित हुआ कि तीनों ही नाम एक के ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही व्यक्तित्व के तीनों नाम हैं, काम के आधार पर नाम पड़ते हैं। तो जो योगीश्वर है, ज्ञानेश्वर है, ज्ञानियों का ईश्वर कहा जाता है, वो फिर ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में कौन हुआ? हुआ या नहीं हुआ? कौन हुआ? है सनत कुमार। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में, प्रैक्टिकल में अभी ब्राह्मणों की दुनिया चल रही है, इसमें बताओ है चंदर। अरे ये पार्ट तो 76 से कहेंगे, जब ज्ञान चंद्रमा किसी में प्रवेश हो, 30 शिव नेत्र सदा शिव प्रवेश हो, और राम वाली आत्मा भी हो, ये तीनों आत्माओं का संकरण हो पार्ट का, तब कहा जाता है शंकर। उससे पहले था ब्राह्मणों की दुनिया में शंकर था है? नहीं था, क्योंकि बाबा ने बताया है, ब्रह्मा मुख से वेदवाणी में ही बता दिया। क्या? कि पहले ब्रह्मा का पार्ट, फिर ब्रह्मा का पार्ट पूरा हो, स्थापना का, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो, तब शंकर का पार्ट। तो 76 से पहले था क्या है? नहीं था। तो ये पूछा जाए कि तुम्हारा जो ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण से जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का बाप कौन? ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा, उनका नाम ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, और जैसा काम वैसा नाम। माँ का काम होता है सहन करना परिवार में। तो इस दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा पार्टधारी है प्रैक्टिकल में हुआ जिसने सबसे जास्ती सहन करके दिखाया? परम ब्रह्म सहन करके दिखाया, दिखाया था है? नहीं। कौन प्रसिद्ध हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा प्रसिद्ध है। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि से, वाचा से, कर्म इंद्रियों से हमको दुख दिया। और परम ब्रह्म के बारे में तो अभी मालूम पड़ा, पहले हम बच्चे जानते थे क्या? नहीं जानते थे। तब जब जानते ही नहीं थे तो उसको साबित कैसे करेंगे
कि कोई परम माने बड़ा, माँ माने माँ, परे से परे रहने वाली कोई माँ भी होती है जो ब्रह्मा से भी परे है।
तो सवाल होता है,
जो बच्चे नाराज होते हैं वो किससे नाराज होते हैं? कच्चे होते हैं, परम भोग आता है और नाराज हो जाते हैं। कैसा भगवान आया हुआ है,
भगवान के घर में भी हमें इतना दुख, ऐसा तो दुनिया में हमने कभी अनुभव ही नहीं किया, ये कैसा भगवान? हम ऐसे भगवान बाप को नहीं मानते।
तो किससे नाराज होते हैं?
बाप से नाराज हो जाते हैं।
तो तुम बच्चे बड़े फायदे में हो, क्योंकि तुम बच्चों को अगर अच्छी सर्विस तुम बच्चे करो तो राजधानी में तुमको अच्छा पद मिल सकता है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। क्योंकि जो भी पद हमें मिलना है बाप से, वो इसी जन्म में मिलना है या अगले जन्म में मिलना है? इसी जन्म में मिलना है। और ये भी जानते हो कि शिवरात्रि आ रही है, क्या जानते हो कि असली शिवरात्रि आ रही है या सन 36 से चली आ रही है?
आ रही है,
है? ब्रह्म कुमारियां झूठी मानती हैं, मनाती हैं, है?
उनको असली शिवरात्रि का पता नहीं है? ब्रह्मा कुमारियां जो शिवरात्रि मनाती हैं, शिव जयंती मनाती हैं, जबकि मुरली में कहा है जयंती साकार की मनाई जाती है, निराकार की जयंती नहीं मनाई जाती। तो भी वो किसके लिए कहती हैं? वो इस दुनिया में साकार किसको मानती हैं?
है?
वो ब्रह्मा बाबा को मानती है कि ब्रह्मा बाबा का पार्ट यज्ञ के आदि से ही है, जब से उनको साक्षात्कार हुए। तो जब से साक्षात्कार हुए तब से ही शिव जयंती हो गई। लेकिन सोचने की बात है, दुनिया में भी माँ के पेट में पिता का बीज पड़ता है तब बच्चे का जन्म होता है या बाद में बच्चे का जन्म कहा जाता है?
हैं?
बाद में कहा जाता है। वो बीज बढ़ करके भ्रूण होता है, बड़ा हो जाता है, हाथ पांव वाला, नाक आंख कान वाला हो जाता है, भले निर्जीव ही रहता है, 4-5 महीने में परिपक्व हो जाता है वो पिंड, तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो तब जन्म कहा जाता है?
नहीं,
नहीं कहा जाता। फिर बच्चा जब बाहर आता है गर्भ से, गुप्त वास से प्रत्यक्ष रूप में दुनिया में आता है, तो जो कानों से आवाज सुनेगा, पड़ोसी भी होगा, घर में जाके देखेगा नहीं, वहाँ वहाँ की आवाज सुनेगा, क्या कहेगा? पड़ोस में बच्चा आगे जा करके देखेगा आंखों से, तो और भी पक्का हो जाएगा, हाँ भाई बच्चा आ गया। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म को मानेगा या नहीं मानेगा? प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। यहाँ हमने देखो क्या मान लिया, क्या बीज पड़ा, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज की यादगार इस दुनिया में कहाँ दिखाई गई है, कहाँ मानी जाती है?
सारी मनुष्य नहीं मालूम, अच्छा थोड़ा इशारा, सारी दुनिया में मनुष्य सृष्टि के बीज की यादगार कौन से शहर में है?
बड़ जल्दी,
उसका नाम ही है बड़ वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बड़ वृक्ष। उससे बड़ा वृक्ष और कोई होता ही नहीं, और उसका बीज भी बहुत सूक्ष्म होता है, और उसके तने, उसकी जड़ें ढेर सारी हो जाती है, तने भी ढेर फैल जाते हैं, ताल तालियां ढेर फैलती हैं। तो वो वृक्ष तो जड़ है कलकत्ते में, जिसे बनियन ट्री कहा जाता है, वो यादगार है। किसकी यादगार है? मनुष्य सृष्टि के उस बीज रूप आत्मा की यादगार है, जिसके द्वारा ब्रह्मा की आत्मा में ज्ञान का बीज डाला जाता है। पक्की बात या कच्ची बात? पक्की बात। तो बीज जब डाला गया, उस समय से जयंती होती आ रही है क्या? वो तो नहीं हो सकती, बीज डालने को थोड़ा ही जयंती कहेंगे। जयंती तो मुरली में बोल दिया साकार की होती है, तो प्रत्यक्षता कहाँ हुई? हुई नहीं। और अगर सिंध हैदराबाद में ढेर सारे सिंध हैदराबादियों को साक्षात्कार के आधार पर ये खबर फैल गई कि सिंध हैदराबाद में भगवान आया हुआ है, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो समझा भगवान आया हुआ है। तो एक बात सोचने की ये है कि भगवान इस दुनिया में आएगा, जिस भगवान को ज्ञान का सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य। वो भारत के पश्चिम में आएगा या पूर्व में आएगा? हैं? पूर्व में आएगा। अष्ट देवों की यादगार चित्रों में दिखाई जाती है। अष्ट देवों में जो ईश्वर कहा जाता है शंकर को, वो कौन सी दिशा में दिखाया जाता है? ईशान कोण में, जहां से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। तो ईश्वर जहां से प्रत्यक्ष होता है, वो ईशान कोण से यादगार होनी चाहिए, आने की शुरुआत होनी चाहिए। तो वो ही हुई, मुरली में भी बोला इस मनुष्य तन को कहां से पकड़ा, इस रथ को? पूरी बंगाल से पकड़ा, कलकत्ते से पकड़ा। तो वहां बीज पड़ा है, बाकी प्रत्यक्षता नहीं हुई, और उस बीज ने परिपक्व मानवीय शरीर का अवधारण किया, निर्जीव शरीर है, छत्तर में डाल दिया। जब ब्रह्मा की आयु 100 साल जो गिनी गई है, कौन से ब्रह्मा की आयु? नहीं है,
आदि ब्रह्मा।
कौन? परम ब्रह्म। जिस परम ब्रह्म में परम पिता प्रवेश करता है ज्ञान देने के लिए, वो परम ब्रह्म रूपी आत्मा उस समय 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था में सन 36 में हुई, 36 में 40 साल और जोड़ते हैं तो 76 आता है। वो पहला ब्रह्म परम ब्रह्म 76 में कितने साल,
100
साल का हो गया। फिर बोला ब्रह्मा जब 100 साल का होता है तो उसका मृत्युलोक खलास हो जाता है। क्या मृत्युलोक खलास हो जाता है तो कहाँ जाता होगा, अमर लोक में जाता है। अमर लोक में जो आत्मा पहली बार जाएगी वो अमरनाथ होगी या उसके बाद में आने वाली आत्माएं अमरनाथ होंगी? तो 76 में घोषणा कर दी थी क्या कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। नई दुनिया की स्थापना में पहले पहले वो बीज रूप आत्मा स्थूल शरीर में निर्जीव शरीर में, कि उसमें आत्मा होती है पहले से
नहीं,
उस निर्जीव शरीर में प्रवेश करती है। सभी माताओं को मालूम भी है, जानती है माताएं कि चौथे पांचवे महीने में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें हरकत आती है। क्या हरकत आती है? तो निर्जीव शरीर की हरकत की बात है या आत्मा की बात है? हैं? दुनिया में निर्जीव शरीर की बात है, वो निर्जीव जो शरीर है पिंड पेट में माँ के वो हरकत करता होगा तो माता को महसूस होता है। यहाँ वो हद की बात तो है नहीं, यहाँ तो आत्मा में वो चैतन्यता आ गई। क्या जिसका वो जड़ शरीर है वो जड़ शरीर आत्मा नहीं थी पहले, क्या था, क्या था, पिंड था। पिंड था माने मिट्टी मिट्टी मात्र थी या उसमें आत्मा भी थी? मिट्टी मिट्टी मात्र थी। मिट्टी ही जब एकदम कठोर बन जाती है तो पत्थर कही जाती है। क्या जो भूकंप आते हैं ना तो मिट्टी भी लावा बन जाती है, बहने वाला लावा, और वो जब सूखता है तो पत्थर बन जाता है। तो वो जो निर्जीव शरीर था वो पत्थर बुद्धि था या चैतन्य आत्मा थी? रथ, शरीर रूपी रथ क्या था? है पत्थर बुद्धि। उन्होंने तो गीतकारों ने गीत बनाए दिए हैं भावना में आकर, बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में आन कर तूने जगाया, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं ना, और सिनेमा वाले भी गाते हैं। तो बात है यहाँ की हम बच्चे सब पहले क्या थे, पत्थर बुद्धि थे, जैसे विदेशियों ने सिखाया कि हम मिट्टी रूपी देह हैं, तो हमने जान लिया कि हाँ हम मिट्टी रूपी देह हैं। आत्मा के बारे में हमें कुछ भी पता ही नहीं था। वो मिट्टी तो संगठित हो जाती है तो पत्थर कही जाती है, और हमारा बाप भी हमसे ज्यादा मजबूत पत्थर था और अभी भी पत्थर होगा या नहीं होगा है? अभी भी क्या होगा है? अरे अभी भी वो पत्थर होगा, पत्थर बुद्धि होगा या पारस बुद्धि बन गया है? बन गया, अब पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं, है? पत्थर बुद्धि था 36 में भी और 76 में भी, उसमें आत्मा आई जो प्रत्यक्ष हुई। किसकी आत्मा प्रत्यक्ष हुई? 10 साल पहले 66 में मुरली में बता दिया। इन नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। बाप ने खुद ही इशारा दे दिया कि 76 में नारायण रूपी वो आत्मा जो भारत कही जाती है, जो नारायण का अर्थ वो ही भारत का अर्थ, एक ही अर्थ है काम के आधार पर नाम। नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। सदैव कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। और भारत में मैं आता हूँ, किस में आता हूँ? भारत में आता हूँ। तो भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। किस बात में लगा रहने वाला? ज्ञान की रोशनी में ही सदा रहने वाला, लगा रहने वाला। ऐसी आत्मा उस भारत में मैं आता हूँ। तो वो आत्मा जिसे भारत नाम दिया, वो बीज रूप आत्मा है मनुष्य सृष्टि की। क्या? क्यों? क्योंकि वो ही आत्मा है जिसको आत्मा का पक्का परिचय प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले होता है। उससे पहले और किसी को प्रैक्टिकल जीवन में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ इसका पक्का पक्का परिचय नहीं होता। और इसका प्रूफ अव्यक्त वाणी में भी दिया है, पिछले साल की अव्यक्त वाणी में। याद है? नहीं याद है? 5 दिसंबर की बात याद है? है? नहीं याद है? किसी को याद नहीं? 5 दिसंबर की बात बताई अव्यक्त वाणी में। बताया कि 18 जनवरी सच्चा स्मृति दिवस नहीं है बाप दादा का। क्यों? क्योंकि जिसे तुम बाप समझते हो और जिसे तुम बड़ा बच्चा दादा समझते हो वो दैहिक रूप में देखते हो, देह धारण करने वाली आत्माओं को ही देखा। क्या? किन आत्माओं को देखते हो? देहधारी आत्माओं को देखते हो, उनको ही तुमने बाप दादा समझ लिया। उस आत्मा को भूल गए जो आत्माओं का बाप है, बाप था, बाप रहेगा। वो कभी भी देह नहीं बनता। उस बाप की याद रही जब कहते हो बाप दादा है? तो पहले निशानी होनी चाहिए। क्या? बाप दादा का मिलन का स्मृति दिवस वो 5 दिसंबर बताया। इसका मतलब है कि कोई आत्मा है जो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि संसार रूपी जंगल शेर के बगैर खाली नहीं रहता, तो ब्रह्मा रूपी जो 3 मूर्तियों में शेर एक दिखाया जाता है वो चला गया तो दूसरा शेर जरूर आता है। तो उसी वर्ष में, कौन से वर्ष में? 69 में वो दूसरा शेर भी आना चाहिए। और वो शेर आता है, आने के बाद कोर्स भी लेगा या नहीं लेगा? कोर्स भी लेता है, जिस कोर्स में बेसिक नॉलेज मात्र दी जाती है। क्या बेसिक नॉलेज? मैं बिंदु आत्मा, शरीर नहीं, मिट्टी का पुतला नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। यादगार बिंदी या टीका लगाते हैं, और मुझे बिंदु आत्मा का बाप भी सांप जैसा लंबा नहीं, हाथी जैसा बोटा ताजा नहीं हो सकता, बिंदु आत्मा का बाप भी बिंदु। ये बात पक्की बैठ जाती है और प्रैक्टिस स्मृति की फाउंडेशन पक्का पक्का लगेगा या कच्चा लगेगा? रात दिन रग लग जाती है। जिसका फाउंडेशन पक्का होगा उसकी 84 जन्म की बिल्डिंग भी पक्की होगी। तो जो 6-7 दिन का कोर्स है, उस कोर्स में ये फोर्स आना जरूरी है। फोर्स इतना आ जाए कि अनुभव होने लगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। इन आँखों से न ये ज्योति बिंदु दिखाई देता, न इन आँखों से वो बाप ज्योति बिंदु दिखाई देता। कैसे दिखाई दे? जो तीसरा नेत्र है बुद्धि का, वो देखे कि वो मेरा बाप ज्योति बिंदु और मैं आत्मा ज्योति बिंदु। अगर ये स्मृति थोड़े समय भी टिकती है, क्या थोड़ा समय भी ये स्मृति टिकती है, तो क्या हुआ? फाउंडेशन पड़ गया स्वधर्म का। जो बोला है गीता में, स्वधर्मे निधनम सेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में थोड़ा टाइम भी अगर टिके आत्मिक स्मृति में, वो बहुत श्रेष्ठ चीज है। थोड़े समय भी टिकेंगे तो बहुत बहुत अकल्याण से बच जाएंगे। तो वो आत्मा जैसे ही आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, शिव बाप प्रवेश नहीं, मिलने के लिए आता है, और दोनों का मिलन होता है, उसे प्रवेश भी भले कह दो। क्या कह दो? प्रवेश भी भले कह दो। तो 69 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75 और 76। माने 76 को छोड़ दो तो कितने साल हुए? 6 साल। शास्त्रों में भी यही कहा है कि कृष्ण का जन्म 9 महीने में नहीं हुआ था। क्या 10 महीने से भी ऊपर हो गया तब कृष्ण का जन्म हुआ था। कौन से कृष्ण की बात होगी? सतयुग के कृष्ण की तो शास्त्रों में कोई बात है, तो कहां से सतयुग के कृष्ण की बात हो गई? हाँ, संगम युग में जो शरीरधारी कृष्ण संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है। तो वो आत्मा, उसे कृष्ण कहो या नारायण कहो, गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे कृष्ण, कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। कैसे आकृष्ट करने वाला? प्रैक्टिकल में या सिर्फ कहने की बात? प्रैक्टिकल में। पहले पहले तुम बच्चों को आकृष्ट करेगा या दुनिया वाले विदेशियों को आकृष्ट करेगा? है, पहले पहले रुद्रमाला के जो मणके कहे जाते हैं, जो रुद्र यज्ञ में पहले स्वाहा होते हैं, उन बच्चों की बात है, रुद्राक्ष बच्चों की बात है।
जिनकी आंखों से वो सारे संसार को देखता है, अक्ष माने आंख, उन बच्चों की बात है। उन बच्चों के लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा का क्या मतलब? लाल लाल धर्मराज की आंखें दिखा के ले जाएगा हैं? ऐसे ले जाएगा? उसको नैनों पर बिठाना कहा जाता है हैं? कब कहा जाए हैं? हाँ, ऐसी स्नेह की दृष्टि से खींचेगा कि तुम बच्चे बरबस देह को, देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को, देह की दुनिया को भूल जाएंगे, जिसे कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। कैसा सुख? ये आंखें इंद्रिय है ना, इन आंखों का जो देखते हो इस दुनिया का सुख, कैसी सुंदर लग रही है विदेशों में जाकर के, एकदम दिल बाग बाग हो जाता है लोगों का, इंडिया छोड़ के चले जाते हैं पढ़े लिखे लोग, वो सुख कुछ भी नहीं उस सामने, उस अतीन्द्रिय सुख के सामने। ऐसी स्टेज तुम्हारी हो जाती है, तब तुम बच्चों को वो जो खींचता है, झाड़ के ऊपर बैठा बैठा देखा नहीं देखा? हाँ देखो ध्यान से, कौन बैठा है? कपड़ा पहन के बैठा है या नंगा बैठा है? नंगा का मतलब क्या हुआ? हाँ, शरीर और शरीर की इंद्रियां याद नहीं रहती। जब इंद्रियां हैं ही नहीं स्मृति में, तो उसको चित्र में कैसे दिखाया जाए है? उसका चित्र है, जिस चित्र को इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, उसको गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति दान। वो मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है, व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, व्यक्ति कहा जाता है ना, पर्सन, व्यक्ति माने जो देखने में आए, अव्यक्त माने जो देखने में आए, मूर्ति माने साकार देखने में आए, अमूर्त जो देखने में आए, तो अव्यक्त मूर्ति ना, ऐसे गीता में लिखा है शब्द। कोई यादगार है? है शिवलिंग यादगार है, मूर्ति है, बड़ा रूप है या बिंदु है? बड़ा रूप है। दुनिया में देश विदेश में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती कौन सी मूर्तियां मिली है? लिंग मूर्तियां मिली। शंकर की नग्न मूर्तियां भी इतनी नहीं मिली, जिन्हें जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं, वो शंकर की नग्न मूर्तियां भी पुरुषार्थी रूप हैं या संपन्न रूप हैं? पुरुषार्थी रूप हैं, पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। उस मूर्ति को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, याद भी पुरुषार्थ है या नहीं? याद भी पुरुषार्थ। तो वही मूर्ति जब पुरुषार्थ पूरा होता है, संपन्न बनती है, तो देह और देह की इंद्रियों को भूल जाती है, उसकी यादगार है लिंग। क्या वही लिंग है जो पत्थर है टोटल 100%, क्या अंश मात्र भी चैतन्यता नहीं है? अंश मात्र भी अगर चैतन्यता होती तो सारी दुनिया का विनाश करने के लिए जितने भी चैतन्य मनुष्य मात्र हैं, उन सब का विनाश करने के लिए तैयार नहीं होता। होता नहीं होता। तो चैतन्य आत्मा कहें या पत्थर बुद्धि कहें, क्या कहें उसको? क्या कहें, पत्थर है या नहीं है? बड़े से बड़ा पत्थर। उस पत्थर की यादगार आज मंदिरों में क्या है? लिंग है, जो पत्थर के रूप में पूजा जाता है कलयुग में। उससे ऊंचा युग है द्वापर युग, जहां पापर नहीं ताम्र लिंग बनाया जाता था। उससे ऊंचा युग है त्रेता, जहां रजत लिंग चांदी का बनाया जाता था, बनाया नहीं जाता था, थे हम। और सतयुग में स्वर्ण लिंग, टोटल सच्चाई थी, 16 कला संपूर्ण। वो लिंग द्वैतवादी द्वापर युग से, जिस युग में द्वैतवादी धर्म पिताओं ने आकर के ऐसा द्वैतवाद फैलाया कि दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, दो से चार, चार से आठ, आठ से ज्यादा, बढ़ते ही चले गए मतमतांतर। पूरे के प्रभाव में आते आते वो आत्मा क्या बन जाती है? एकदम पत्थर बुद्धि बन जाती है। नास्तिकों से भी, नास्तिक क्या करते हैं? वो तो सिर्फ एटम बम बनाते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कर पाते क्या के उसको ब्लास्ट कर दें। क्यों करते हैं? 20-20 मेगावाट की बम्बियां, 45 में विस्फोट की थी, उसकी भयंकरता देख करके उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। इतने साल के बाद भी जो वहां धराशायी हुए थे, जख्मी हुए थे, वो लोग आज भी हॉस्पिटल्स में पड़े पड़े बुरी तरह से कराह रहे हैं, लंबे समय से। उस कराहट को देख करके उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे और दुनिया के देशों का विनाश होगा तो हमारा भी खात्मा हो जाए। अब सोचने में लगे हुए हैं, ये जो हमने निर्माण किया है, हमने जो रचना की है, इससे पीछा कैसे छुटाए, इसे खत्म कैसे करें। तो देखो वो इतने पत्थर बुद्धि, उन पत्थर बुद्धियों का भी कौन बाप आया हुआ है जो बोलता है ब्रह्मा के मुख से, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बोलता है वो नास्तिक? जो रशियंस बैठे हैं, जिन्होंने ये एटमिक एनर्जी बनाई है, वो भी उसके बच्चे हैं या नहीं हैं? उसे प्रजापिता के बच्चे हैं या नहीं हैं? वो बाप बोलता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया। रशियंस का भी बाप है या नहीं? उनको भी एक जन्म की जीवन मुक्ति और मुक्ति मिलेगी या नहीं? कौन से बाप से मिलेगी? उससे नहीं मिलती। वो उनका बाप है भी नहीं, एक जन्म लेने वालों का, दो जन्म लेने वालों का। वो संपूर्ण आत्मा है, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्हीं का बाप है। क्या? किनका बाप है? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनका बाप है। सबका बाप वास्तव में, वास्तव में। तो जो उन रशियंस नास्तिकों का भी बाप है, जो ऐसा भयंकर कर्म करके बैठते हैं, रचना रच के बैठते हैं, उनका बाप कैसे साबित होता है? हाँ, वो तो सिर्फ बनाते हैं, बना करके उसका विनाश नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। जैसे धर्म पिता हैं, अपने धर्म की स्थापना तो करते हैं लेकिन विनाश नहीं कर पाते।
अपने धर्म तो क्या, पीछे से जो धर्म आ रहा है उसका भी विनाश नहीं कर पाते। पीछे से आए हुए जो धर्म के प्रकांड विद्वान आचार्य हैं, उनका भी मुकाबला करके उनका पराभव नहीं कर पाते। तो ये रसियंस का भी बाप वो ऐसा काम करता है जो दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाता। नास्तिकों का बाप स्टालिन और लेनिन भी ये काम नहीं कर सकते। वो भी आत्मा इसी दुनिया में होंगी, तो वो क्या कार्य करता है, है? इस सारी दुनिया में उसके जितने भी बच्चे हैं, मनुष्य सृष्टि में उसके कितने बच्चे हैं, है? 500-700 करोड़ बच्चे। उन सबका विनाश करता है, मनुष्यों का, आत्माओं का नहीं, किसका, मनुष्यों का, जो मनन मन को चलाते हैं, मनाए मन जिनका चलाए मन, उन सब का विनाश कर देता है। तो ऐसा पत्थर बुद्धि है, या उसको चैतन्य बुद्धि कहें, है? और विनाश का कारण क्या होता है, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, अपवित्रता। बड़े से बड़ी आती है व्यभिचार से। कैसे आती है, व्यभिचार से। और मनुष्य मात्र, बड़े से बड़े भारत के राजाएं भी हुए होंगे तो 200-400-800 रानियां रखेंगे, लिमिट में है या अनलिमिट है, इतनों के साथ भी विचार करेंगे, और वो कितना, शास्त्रों में जो गाया हुआ है 16108 ऐसी आत्माएं हैं जो अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं। कैसा सुख, इंद्रियों से परे का सुख। तो उन 16000 ने राजयोग सीख करके अतीन्द्रिय सुख भोगा होगा, इंद्रियों का सुख त्यागा होगा, या बिना राजयोग सीखे जागा होगा, है? राजयोग की ये विशेषता है कि इंद्रियों के सुख को भुला देता है। और सहज राजयोग भी है, सहज ज्ञान भी है, लेकिन सच्चाई से चला जाए तब है। अगर मन में बुद्धि में थोड़ी भी झूठापन है तो वो राजयोग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बोला, अपना पूरा पोता मिल लेने वाला कोई करोड़ों में एक है, करोड़ पुरुषार्थियों में भी एक। तो देखो सतयुग अंत में कितने होते हैं, है? 2 करोड़। सतयुग के मध्य में 1 करोड़। माने सतयुग जब तक सत्व प्रधान और सतो सामान्य रहता है तब तक आने वाली आत्माएं उन आत्माओं के बीच में भी, उन 1 करोड़ आत्माओं में भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो अपना पूरी सच्चाई बाप के सामने खोल के रखता हो। कुछ न कुछ छुपाते हैं जरूर, सत्य बाप के सामने छुपाते हैं। किसके सामने, जिसे ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, जो सत्य बाप सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, उस बाप को क्या प्रिय है, सच्चाई प्रिय है। सच्चे बच्चों के सामने पहले प्रत्यक्ष होता है, झूठों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता।
इसलिए मुरली में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य है। क्या क्या ब्रह्म वाक्य है? जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्या ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है? कैसा कैसा ड्रामा बना हुआ है? जो अंदर से एक है, बाहर से दूसरा है, वो मेरे नजदीक की आत्माएं नहीं है। मेरे नजदीक मेरे रुद्राक्ष जिनकी यादगार है। कहाँ होते हैं ज्यादा पैदा? नेपाल। उस देश का नाम है यादगार है, नई दुनिया की पालना करने वाला, वो हद का नेपाल है, पहाड़ पर है। और ये बेहद का नेपाल है। ये मन बुद्धि रूपी जो आत्माएं हैं, बेहद के नेपाल की जो आत्माएं, वो याद की ऊंची स्टेज पे रहती हैं। कहाँ रहती हैं? याद की ऊंची स्टेज में रहती हैं। और उनमें से चुनी हुई आत्माएं हैं, कितनी? 16,108 जो चुनी हुई आत्माएं हैं, वो नेपाल जो नई दुनिया की स्थापना होती है, नई दुनिया की संपन्न राजधानी बनती है, उसकी पालना करने वाले, क्या कहेंगे उनको? नेपाली। तो वो असली नेपाली तुम बच्चे हो। भारतवर्ष में अब तक भी देखा जाता है कि सुरक्षा गार्ड के रूप में ज्यादातर किस देशवासियों को रखा जा रहा है? है वो रखा गौ रक्षा, किनको रखा जाता है? गौ रक्षा का बिगड़ा हुआ रूप है गोरखा, जो गौ की रक्षा करने वाले हैं। माने जिनकी मेंटेलिटी है कि जो भगवान की गौएं थी, उन गौओं की रक्षा करने वाला पांडव हमको बनना है, उनको भक्षण करने वाला असुर नहीं बनना है। ऐसी गोरखा बटालियन, मना रूहानी योद्धा या जिस्मानी योद्धा है? रूहानी योद्धा। ये रूहानी योद्धा ब्राह्मणों की जो नौकुरियां होती हैं, उनमें कौन सी पुरी के ब्राह्मण हैं? है अब्बल नंबर पुरी, उनका धंधा क्या है? है गौ रक्षा, जानवर गौओं की रक्षा है, ह्यूमन गौओं की रक्षा, जिन ह्यूमन गौओं को भगवान ने आकर के पाला था, नहीं पाला था, पाला था, उन ह्यूमन गौओं की रक्षा का काम उस गोरखा बटालियन का है, जो रूहानी योद्धा कहे जाते हैं। आज भी कोई भी देश में सबसे जास्ती खर्चा कौन से डिपार्टमेंट में किया जाता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट में। ये है भगवान की मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री। कैसी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। इस मिलिट्री के जो वॉरियर्स हैं, वो ऐसे सच्चे वॉरियर्स हैं, गौओं को काटने वाले हैं या गौओं की रक्षा करने वाले हैं? है जो गौओं को काटने के लिए तैयार रहते हैं, कब मौका मिले तक से काट डालें, चोरी करके ले जाते हैं, गौओं की चोरी करके ले जाते हैं, या सरेआम मैदान में ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, चोर हैं, डकैत हैं, ऐसे चोर डकैतों का खात्मा करने वाले हैं गोरखा बटालियन के लोग। तो बताया ऐसे मेरे रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स मेरे को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? कि मेरा असली जन्म दिवस कब है? सन 36-37 है, सन 47 है, यह सन 76 है, यह कब है? हैं? कब है? 76 है। 76 में आत्मा की प्रत्यक्षता हुई, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, नहीं है? नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में। तो नारायण इस सृष्टि का बाप है या नहीं है? है, भारत है या नहीं है? है? तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे मुरली में बता दिया, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, तो वो राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। आत्मा का जन्म हुआ, आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है उसका जन्म हुआ, या आत्माओं के बाप का जन्म हुआ? है? आत्मा रूपी भाइयों ने, आत्मा आत्मा भाई भाई ना, उन आत्मा रूपी भाइयों ने जो बड़ा बच्चा है, राम बाप जिसे कहा जाता, या नर से डायरेक्ट क्या बनता? नारायण बनता। उस आत्मा की प्रत्यक्षता है सन 76 में। बाकी उसको जो बाप है, नर को क्या बनाने वाला? नारायण बनाने वाला, उसकी प्रत्यक्षता नहीं है। तो कब है? है? हाँ, उसके लिए भी मुरली में ही इशारा दिया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। पहले बाप का जन्म दिखा दिया मनुष्य सृष्टि के बाप, उसके बाद इस मनुष्य सृष्टि में जो दिग्पाल गाए हुए हैं, कितनी दिशाएं हैं? 4 मुख्य दिशाएं और 4 उनके कोण, तो 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में इस पृथ्वी पर पालना करने वाले जो 8 दिग्पाल गाए हुए हैं, जिनके लिए बोला क्या चक्कर लगाएंगे तो क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो वो आत्माएं भी प्रत्यक्ष होंगी या नहीं होंगी? हैं? होंगी। तो पहला टू लेट का बोर्ड लगा 76 में, एक युगल के लिए या ढेरों के लिए? एक युगल को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगा नाम से, उसकी प्रत्यक्षता हो गई। अब कोई का नंबर 40 साल में नहीं लगेगा, 40 साल के बाद जिनका नंबर लगता है वो है वो 8 दिग्पाल, जो शिव के अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। क्या गाई हुई है? शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। उन अष्टमूर्तियों की मान्यता, उनके मंदिर, उनकी मूर्तियां दक्षिण भारत में बनाई जाती है। नहीं बुद्धि में आया क्या? उत्तर भारत में उसकी मूर्तियां 8 की नहीं बनाई जाती, मंदिर नहीं बनाए जाते यादगार। तो प्रैक्टिकल हुआ होगा तब बनाए जाते हैं, या प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है, संगम में शूटिंग ही नहीं हुई है, रिहर्सल ही नहीं हुई है,
रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है इस बात की, तो होगा नहीं। अभी प्रैक्टिकल में ये सब देखने में आएगा, खास दक्षिण भारत में, कि आंख की प्रत्यक्षता कहाँ होगी पहले, दक्षिण भारत। उसके बाद आठ प्रत्यक्ष होंगे तो राजधानी भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं है? वो जो आठ विशेष राजाएं हैं उनकी धारणा शक्ति भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी है? जो धारणा शक्ति है वो धारणा शक्ति भी चैतन्य में होनी चाहिए। धारणा चैतन्य आत्मा करेगी या जड़ राजधानी करेगी? चैतन्य राजधानी करती है धारणा दिव्य गुणों की। वो दिव्य गुण वाली राजधानी भी प्रत्यक्ष होती है जो बाप का विरुद्ध है। क्या मैं जब आता हूँ तो बक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ। तो क्षेत्र में तो राजधानी नहीं स्थापन हुई है? नहीं हुई। प्रैक्टिकल में कब होती है? हैं? 2018 के बाद। वो भी प्रत्यक्ष उनको होगी जो उस राजधानी में ऐड किए जाएंगे। आठ नंबर के बाद नौवा नंबर आएगा या नहीं आएगा? दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, ये नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बनेगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी तो सारी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाले ढेर सारे बैठे हुए हैं। फिर ये राजधानी कैसी तैयार हो जाएगी है? धोखा देने वालों की राजधानी होगी या पक्के ईमानदार बच्चे होंगे? पक्के ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चों की राजधानी होगी। दुनिया की जो पहली पहली अव्वल नंबर की राजधानी स्थापन होगी अल्लाह अव्वल दीन के द्वारा, हेवनली गॉड फादर के द्वारा, जो हेवन की शुरुआत करता है, तो 100% पक्की होगी या अंश मात्र कच्चे भी होंगे? 100% पक्की राजधानी का फाउंडेशन पड़ना है। तो बोला शिवरात्रि आ रही है। क्या शिवरात्रि आ रही है? कौन सी दुनिया में शिवरात्रि बताई? ये ब्राह्मणों की दुनिया की शिवरात्रि है या 500-700 करोड़ दुनिया की शिवरात्रि है? है ब्राह्मणों की दुनिया की शिवरात्रि है। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो छटे हुए हैं, कैसे? पास विदानर। कैसे? पास विदानर। ऑनर माने रिस्पेक्ट। सारी दुनिया जिनको रिस्पेक्ट देती है। कुरान में लिखा है अल्लाह ताला के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। उन 8 फरिश्तों में जो सबसे पावरफुल फरिश्ता था उसका नाम जबराइल। जबरदस्त। कैसा? जबरदस्त। ऐसी बात आई वो 8 ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो 8 की माला शिव के मस्तक पर रखी हुई दिखाई जाती है। बाप को जिन बच्चों पर बहुत प्यार आता है तो बाप क्या करते हैं, उन बच्चों को प्यार में आकर सर पे चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे बच्चे और उन बच्चों की राजधानी संपन्न कब होगी? ये तो शुरुआत बताई है, आरंभ बताया। छोटी राजधानी है या बड़ी राजधानी? पक्की है संपन्न राजधानी है या संपन्न होना है, है? अरे आज की राजधानी संपन्न कहें या संपन्न होना है? होना है। 108 राजाएं उस माला रूपी संगठन में पिरोए लिए जाएं तब संपन्न राजधानी बनेगी। तो कब बनेंगे वो 108? कब प्रत्यक्ष होंगे? 28। वो राजधानी ऐसी सशक्त राजधानी का संगठन रूपी माला बनेगी कि दुनिया के जो विदेशी धर्म हैं, विदेशी राज्य हैं और उन विदेशों की जो भी राजधानियां हैं, बड़ी बड़ी धनाढ्य, बड़ी बड़ी पावरफुल कही जाती है। अभी इस दुनिया में सबसे जास्ती पावरफुल राजधानी कौन से देश की है? बाबा ने कहा अमेरिका। हाँ ओ मेरे हो क्या, आ जाओ नजदीक आ जाओ, दूर क्यों बैठे हो? नजदीक आने में शर्म आती है क्या? तो बताया ऐसे सशक्त देश और उनकी सशक्त राजधानियां और उनके सशक्त राज्याधीश वो भी टक्कर लेंगे 28 के बाद। क्या ऐसे ही नहीं राजधानी अर्पण कर देंगे? विश्व की बादशाही है तो बादशाही लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद विजय होती है या पहले ही हो जाती है? सारे विश्व के ऊपर विजयी बनना है तो सारे विश्व की आत्माओं से, राजधानियों से, उन राजधानियों के जो भी रक्षक संरक्षक हैं, मिलिट्री वाले, उनसे टक्कर लेनी होगी या नहीं लेनी होगी? लेनी होगी। तो 28 से लेकर के और 37 तक जबरदस्त भीषण युद्ध का वातावरण सारी दुनिया में होगा, बहुत संघर्ष का वातावरण। क्या उसमें जो मेरे हिम्मतवान बच्चे होंगे, जो कोई कोई ज्योतिषियों ने भी लिखा है, भारत के साधारण साधारण कहे जाने वाले लोग वो सारी दुनिया को हिला के रख देंगे। तो वो होगी पक्की शिवरात्रि। क्या कहेंगे उसको? महाशिवरात्रि। कैसी शिवरात्रि? बड़े ते बड़ी शिवरात्रि। इस दुनिया में बड़े ते बड़ी शिवरात्रि कब होगी? जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं शिव को और शिव के प्रैक्टिकल पार्ट को, राजधानी की स्थापना करने वाले को और राजधानी की स्थापना में जो धर्म की धारणाएं हैं ब्राह्मण देवताओं की, उन धारणाओं को स्थापन करने वाले को प्रैक्टिकल में जान लेंगी, तब कहा जाएगा कि महाशिवरात्रि हुई, शिव को इस संसार की सभी आत्माओं ने पहचाना।
तो ऐसी शिवरात्रि आ रही है या छत्तीस में जब ओम मंडली की स्थापना हुई, ओम मंडली के ब्राह्मणों का संगठन बना, या जब 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ब्राह्मणों का संगठन बना तब शिवरात्रि हुई, या 76 में शिवरात्रि हुई जब एडवांस पार्टी बनी, या अभी आ रही है? है? आ रही है, क्योंकि कोई को मालूम तो नहीं है ना। क्या जो शिवरात्रि शिवरात्रि करते हैं, मनाते हैं, जागरण करते हैं कि नहीं है? जागरण करते हैं, वो जानते नहीं कि शिवरात्रि का क्या होता है। हमको समझाना जरा सा। क्या ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि जिसे कहा जाता है, महान से महान शिवरात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि सारी दुनिया में फैल जाती है, तब मैं आता हूं। समझाना है तो, क्योंकि साल के साल क्रिश्चियन भी तो मनाते हैं ना। क्या अपने धर्म पिता का मनाते हैं कि नहीं है? तो तुम अपने धर्म पिता का नहीं मना देंगे? कितना करते हैं देखो, कितना जलसा मनाते हैं, जलसा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी त्रिमूर्ति बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? त्रिमूर्ति बनानी चाहिए। त्रिमूर्ति में जो समझानी है वो खास किसकी समझानी देनी है? है? बाप की समझानी देनी है। बाप कौन? बाबा बच्चों को कंप्लेंट ही करते रहते हैं, बड़ी टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं देते। त्रिमूर्ति में बाप का परिचय नहीं देते क्या? देते हैं। ब्रह्मा कुमारियां परिचय देती हैं बेसिकली। हम भी ब्रह्मा कुमार थे तो हमने भी बेसिकली प्रदर्शनियों में मेले मलाखड़ों में बहुत समझाया। क्या क्या समझाया? हम आत्मा हैं, तुम भी सब आत्मा हो, और आपस में हम भाई भाई हैं, और वो ज्योति बिंदु हमारा बाप है, उसका नाम है शिव। उसकी शिवरात्रि हुई, कब हुई? सन 36 में हुई। बाबा ने कहा जयंती तो साकार की होती है, तो कहते हाँ साकार, दादा लेखराज में शिव बाबा प्रत्यक्ष हुआ साकार में, तो दादा लेखराज ही भगवान का साकार रूप है। बाकी चार हाथ का न कोई विष्णु होता है, न कोई सांप बिच्छू टिंडन वाला ऐसा नंग मुनंगा दहंग कोई शंकर होता है, ये तो शास्त्रों में कल्पना है। असली जो प्रैक्टिकल में है साकार में, जिसमें भगवान आया, वो तो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आया ना। तो कौन हुआ गीता का भगवान प्रैक्टिकल में साकार में? कौन हुआ? दादा लेखराज। गलत है क्या? कृष्ण की आत्मा नहीं है? अरे कृष्ण की आत्मा है या नहीं? तो कृष्ण ही तो भगवान माना गया गीता का भगवान भक्ति मार्ग में। है कृष्ण बच्चा है? अरे चलो बच्चा ही सही, लेकिन है तो भगवान ना। है गीता का भगवान है ना? अरे दुनिया मानती है गीता का भगवान कृष्ण।
तुम भी मानते थे, अब क्या मानते हो? अब किसको मानते हो? बाप है कि नहीं है? कौन है? त्रिमूर्ति में बताओ कौन है?
जो अव्यक्त, जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है।
क्या?
जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है।
व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, वो किसको बता रहे? कौन है? अरे रुक रुक क्यों बोलते? बाप, बाप के बारे में कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो रुक रुक के बताओ, याद कर ले। वो तो गीता में कहा है, वो तो मनुष्यों ने गीता लिखी।
बोलो कृष्ण के लिए तो बोलो कृष्ण बच्चा, कृष्ण बच्चा है और राम बाप है।
है
राम बाप है, कृष्ण बच्चा है।
वो अव्यक्त मूर्ति ना की बात कर रहे हैं। कृष्ण बच्चा भी साकार है और राम बाप भी साकार है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। कौन है? अरे
है राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती, वही गीता का भगवान है।
उसका रूप क्या है?
शिवलिंग।
शिवलिंग उसमें आत्मा है कि नहीं? और पांच तत्वों का संघात पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का बीज है या नहीं? क्या है?
शिवलिंग।
अरे शिव बिंदी का नाम है, इतना तो मान ही लिया आपने, भी मान लिया मैंने भी मान लिया, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि जो परम पुरुष है उस परम पुरुष की परम ब्रह्म आत्मा कौन है? परम माने बड़ी, ब्रह्म माने ब्रह्मा।
राम वाली
आत्मा कहाँ है? आत्मा किस में है? त्रिमूर्ति में कौन सा रूप है जिसमें राम वाली आत्मा है? शंकर, वो तो अधूरा है।
ऊपर जो बैठा है ज्योतिर्मूर्ति, ऊपर जो बैठा है ना,
ऊपर बैठा है, ऊपर जो बैठा है
वो गलत है, इसको बदलना पड़ेगा।
वो चित्र ही बदलना पड़ेगा,
शिवलिंग आएगा,
शिवलिंग है वो बदलना पड़ेगा,
इसमें डालना पड़ेगा चित्र में।
किसमें डालना पड़ेगा? चित्र में ही तो है, चित्र के बाहर कहाँ है?
ज्योतिर्बिंदु बिंदु तो साकार हो गया ना, शिवलिंग साकार है ना।
शिवलिंग सिर्फ साकार की यादगार है,
साकार साकार निराकार का मेल से मेल, साकार जब निराकार।
ये तो मान लिया कि तुम्हारी आत्मा भी निराकार है और तुम्हारा शरीर साकार है, दोनों का मेल, दोनों की प्रवृत्ति वो जीवात्मा कही जाती है, वो मान लिया। लेकिन कार्य कैसे करती है? करती धरती है या ऐसे ही लुढ़काए दे तो लुढ़कती जाती है? है क्या करती धरती है?
पावर बना।
अच्छा ये
साकार संघ में प्रवेश करके आप बता दीजिए।
पतितों को पावन बनाती है? पति तो 500 करोड़, 500-700 करोड़ पतित नहीं है तो उन सबको पावन, वो गोल गोल शिवलिंग बनाता है। इतना तो मान लिया कि मेरे लिंग की ही यादगार है क्या? मेरा लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता, और इंद्रियां पूजी जाती हैं, नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, सारी इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती हैं, लेकिन कोई देवता की लिंग नहीं पूजा जाता। क्यों? कोई कारण होगा ना, निर्विकारी
उस इंद्रिय के ऊपर कोई जीत नहीं पाता, एक ही जीत पाता है।
हाँ, इस मनुष्य सृष्टि में एक ही मनुष्य आत्मा है जो शास्त्रों में भी गाई हुई है कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो अनादि है, वो अनंत है, न उसका आदि है न उसका अंत है। शास्त्रों में दिखाया भी गया कि लिंग को जानने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए और उनका अंत उन्हें कहीं भी नहीं मिला। कहाँ उनका आदि है और कहाँ उनका अंत है? तो बताओ, दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां तीन मूर्तियों में से दो मूर्तियां वो भी नहीं जानती तो हम और आप क्या जानेंगे? तो उसका आदि मध्य अंत नहीं है, वो अनादि है, अनंत है और सत्य है कि असत्य है। गीता में भी लिखा हुआ है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता, तो 84 के चक्र में इस सृष्टि में उसका विनाश होता होगा? मुरली में भी ऐसे ही बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज कायम है नहीं, सदा काल सिर्फ एक शिव बाबा है। माना 5-4 वर्ष के सृष्टि चक्र में सब आत्माएं इस सच रूपी रंगमंच को छोड़ देती है, अव्यक्त हो जाती हैं, नाम निशान उनका पता नहीं चलता कहां गई। एक है जिसका शरीर भी नष्ट नहीं होता और आत्मा भी नष्ट नहीं होती, पूरा 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाने वाली, एक मिनट भी कम नहीं, तो उसको कहेंगे अपूर्ण आत्मा या संपूर्ण आत्मा? संपूर्ण आत्मा। इसलिए बोला त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, शिव की तीन मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन देवता हैं। किसको महादेव कहते हैं? है? देव देव महादेव कहा जाता है, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव शंकर ही बड़ा बच्चा हुआ। तो जो बड़ा बच्चा है वो बाप की सारी प्रॉपर्टी का हकदार पहले बनता है या नहीं बनता है? बनता है। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई दुनिया में कि सभी राजाओं ने सभी मनुष्यों ने अपने बड़े बच्चे को सारा दिल दिया, जिसको दिल दिया उसको सारी प्रॉपर्टी दे दी। परंपरा किसने डाली? है? शिव बाप ने परंपरा डाली। तो वो शिव बाप का बड़ा बच्चा जो परम ब्रह्म कहा गया, वो परम ब्रह्म नाम की आत्मा भले पुरुष है अंतिम जन्म में, तो भी उसको माशूक बनाया, खुद आशिक बना। कौन? परम पिता, जो परम पुरुष है। पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो परे ते परे है वो परम पुरुष, उस आत्मा को अपनी सारी प्रॉपर्टी देता है, अपने पास कुछ भी रखता नहीं। अभी भी कह रहा है क्या, मेरे पास कुछ अब देने को है नहीं, जितना देना था मैंने तुम बच्चों को सब क्या दे दिया है? हाँ, वो ज्ञान का अकूट भंडार है। वो शिव क्या है? आत्माओं का बाप क्या है? ज्ञान का अकूट भंडार है।
वो निराकार आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप निराकार ज्ञान का अकूट भंडार है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी है। और हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए पूर्व जन्म की अगले जन्मों की बातों को नहीं जानते। तो वो सारा सत्य जानता है, तीनों काल का, भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकालदर्शी है। लेकिन कहता है मैं तो सिर्फ त्रिकालदर्शी हूँ। क्या? मैं सिर्फ त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। तुम बच्चे हो नंबर वार, मास्टर त्रिकालदर्शी। माना जो दर्शन शक्ति है, ज्ञान की जो शक्ति है, वो तुम्हारे अंदर प्रैक्टिकल में है और मेरे अंदर प्रैक्टिकल में नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल शरीर और शरीर की इंद्रियों से होता है, बिना शरीर की इंद्रियों के शरीर के प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो तुम बच्चे नंबर वार त्रिकालदर्शी, तुम बच्चे नंबर वार त्रिलोकी नाथ भी हो, तीनों लोकों के नाथ हो। मैं तीनों लोकों का नाथ नहीं हूँ। सुखधाम का मालिक बनता है, है? दुखधाम का मालिक बनता है शिव? नहीं बनता। वो तो इस सृष्टि पर जब आता है तो दुखधाम में आता है, 100% दुखधाम में रह करके नरक की दुनिया को क्या बनाता है? स्वर्ग बनाता है। कौन सी दुनिया को? नरक। नाम क्यों पड़ा? नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। इस दुनिया को नरक किसने बनाया? है? नर ने बनाया, मनुष्यों ने बनाया। तो नर रूपी मनुष्यों ने, जिन्होंने इस दुनिया को नरक बनाया, जिसमें इस मनुष्यों की दुनिया का बाप भी शामिल है या नहीं शामिल है? है? उस दुनिया को मैं आकर क्या बनाता हूँ? है? स्वर्ग बनाता हूँ। क्यों? मेरे में क्या खासियत है? है?
स्वार्थी नहीं है, सदैव स्वस्थ में रहता
हूँ। हाँ, वो स्वर्ग इसलिए बनाता है कि सदा स्व में स्थित रहता है। स्व माने आत्मा, सदैव स्व स्थिति में स्थित रहता है, इसलिए उसको रथ है ही नहीं। जब रथ ही नहीं है तो रथ की इंद्रियां भी नहीं है, इंद्रियां नहीं है तो पाप पुण्य भी उसका नहीं बनता। तो वो त्रिकालदर्शी है, रथ रूपी शरीर नहीं है, देह नहीं है, इसलिए स्वार्थी नहीं है। और जो स्वार्थी नहीं है वो तो परमार्थी ही होगा, दूसरों का भला करने वाला ही होगा या बुरा करने वाला होगा। तो जो स्वार्थी होते हैं, जो भी आत्माएं हो मनुष्य तन में, आज हो या कल हो जाएं, देव आत्माएं हैं तो स्वार्थी नहीं है। देव आत्माएं संघ के रंग में आकर के स्वार्थी बनती हैं, तो दुखदाई बन जाती है। स्वार्थी हैं तो दुखदाई है। क्या? दुखदाई है। और स्वार्थी नहीं है, स्व स्थिति में स्थित है तो सुखदाई। तो सुखदाई बाप आकर के जो सदा सुखदाई सदा शिव है, वो क्या बनाता है? सदा स्व स्थिति में स्थित होने वाला बनाता है, एक जन्म के लिए नहीं,
अनेक जन्मों के लिए स्वयं स्थिति में स्थित होने योग्य बना देता है। इसलिए तुम बच्चे 21 जन्म तक कभी स्वार्थी नहीं बनते, तुम्हें रथ की और रथ की इंद्रियों की इतनी कामना नहीं सताती है। हाँ, देह क्या देह शरीर का जहां से भान होता है, देह भान का पलड़ा भारी हो जाता है, आत्माभिमान का पलड़ा हल्का हो जाता है, तब तुम स्वार्थी बनते हो। कब हो जाता है देह भान का पलड़ा भारी? है द्वैतवादी द्वापर युग से, जब से बाप की मत में मनमत या मनुष्य मत डालने वाले धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आत्माएं आती हैं, तब से ये दुनिया द्वैतवादी दुनिया बन जाती है, जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मत, दो दो कुल, दो दो हर प्रकार से द्वैत फैल जाता है इस दुनिया में, क्योंकि एक बाप रहता ही नहीं। कितने बाप हो जाते हैं? दसियों बाप हो जाते हैं। तो बच्चे आपस में झगड़ेंगे कि नहीं? हैं? झगड़ते हैं। तो ये झगड़े की दुनिया बन जाती है। इस दुनिया को पलट करके स्वार्थी से मैं क्या बनाता हूँ? क्या बनाता हूँ? स्वयं स्थिति में रहने वाला बनाता हूँ। तो 21 जन्म के लिए तुम बच्चे, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित रहते हो। क्या 8 कलाएं जब तक तुम्हारे में रहती हैं पूरी, तब तक तुम स्वयं स्थिति में स्थित, पलड़ा जो है हल्का नहीं होता, ऊपर नहीं जाता। जब 8 कलाओं से नीचे गिरते हो तो पलड़ा तुम्हारा हल्का हो जाता है और देवानियों का पलड़ा भारी हो जाता है। तो क्या करना है? है स्वधर्मे निधनम से है। क्या करना है? आत्मिक धर्म में स्थित रहना है। आत्मिक धर्म में स्थित रहेंगे, आत्मा की धारणा में स्थित रहेंगे, तो तुम कभी भी किसी के अधीन नहीं होंगे। प्रकृति तुम्हारी दासी बन करके रहेगी। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये देवताएं तुम्हारी खुट्टे बर्दारी करेंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी पृथ्वी तामसी बनती है तो भूकंप लाती है, तुम्हारे सारे महलवाड़ियां अटारियां जो तुमने बनाए हैं बड़ी कामना से दरासाई कर देती। वायु क्या करती है? जोर से आंधी आती है, तूफान आता है, बवंडर आता है, परेशान परेशान कर देता है। चेन्नई में कितनी बार आया अभी है? जो बड़े उमंग उत्साह से बनाया था, क्या हवाई अड्डा? कैसा हवाई अड्डा? इंटरनेशनल हवाई अड्डा। क्या हाल हुआ है? सारा क्षण भर में डूब गया कि रह गया? सब भाग गए कि कोई ठहर गया? सब भाग गए। तो ऐसे 5 तत्वों का संघात जो प्रकृति है, जिसे धरती माता कहा जाता है, वो 2 प्रकार की प्रकृति गीता में भी बताई गई। जैसी एक है जड़त्वमयी और एक है चैतन्य, वो है परा प्रकृति। क्या कैसी प्रकृति? परा प्रकृति। जैसे परम पुरुष है वैसे ही परा प्रकृति भी है। प्रकृति माता है या पिता है? माता है, तो लाजमी है कौन होगा? माता है तो कौन होगा उसके पीछे? पिता भी होगा। उसको कोई जानता ही नहीं। कोई जानता है? अरे भारतवासी जानते हैं कि परा प्रकृति जो है उसका परम पुरुष कौन है जो पिता के रूप में है? प्रकृति पति कहा जाता है, वो कौन है? कहते हैं प्रकृतिपति, प्रकृतिपति, मायापति, लक्ष्मीपति। चलो लक्ष्मीपति का नाम बता देते हैं, नारायण। अरे प्रकृतिपति का भी तो नाम बताओ, उसकी यादगार भी तो इस दुनिया में बताओ। यादगार होगी कि नहीं होगी? इतना भयंकर रूप धारण करने वाली प्रकृति जिसका सहारा माया को भी लेना पड़ता है। क्या माया भी तुम बच्चों के पुरुषार्थ से तंग आ जाती है? क्या क्या बोला अभ्यवाणी में? माया तंग आ चुकी है, थक चुकी है। क्या करते? थक चुकी। कौन सा काम करते? तुम बच्चों से लड़ाई लड़ते लड़ते माया थक चुकी है। यहाँ तक कि साकार शरीर भी छूट जाता है तो भी ऐसी विचित्र माया है कि हिम्मत हार जाती है क्या? है? हिम्मत नहीं हारती। क्या करती है? प्रकृति से हाथ मिला लेती है। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। कौन है प्रकृष्ट रचना? जगदम्बा है, जगत पिता की रचना। इतना जानते हैं कि जगत पिता है तो जगदम्बा भी है, लेकिन वो जगत पिता कौन है ये नहीं जानते। उसने परा प्रकृति को कब रचा, कब अपनी पत्नी बनाया ये नहीं जानते, कैसे बनाया ये भी नहीं जानते। उसकी यादगार क्या है परम पुरुष की वो भी नहीं जानते। पूजते हैं, शिव के मंदिर में जाना, उन पुजारियों से पूछना क्या है, है? ये जो जाकर के तुम ऐसे ऐसे मक्खन चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ये क्या है, क्या कर रहे हो? हे तुम नास्तिक हो क्या? हमको ही डांटना शुरू कर देगा, पूछेगा नहीं, हमें तो नहीं मालूम भाई, आप ही बता दो। पूछेगा? हाँ नहीं पूछेगा, बहुत अहंकारी, बगा देगा। तो देखो दुनिया का क्या हाल हुआ पड़ा है, है? दुनिया वाले कुछ नहीं जानते और तुम बच्चे है? तुम बच्चे जानते हो कि ये जो शिव के मंदिर में लिंग रखा हुआ है और जिसका सात्विक यादगार द्वापर के आदि में बना था, अभी मंदिर में जो रखा हुआ है वो तो पत्थर का है, मोस्टली ग्रेनाइट पत्थर का बनता है। सबसे कड़ा पत्थर कौन सा होता है? ग्रेनाइट। लेकिन उसका जो सात्विक यादगार है वो द्वापर के आदि में बनाया गया था, सोमनाथ मंदिर में। मंदिर का नाम क्या था? सोमनाथ। ये सोम क्या? सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा को नथे नाक में नथेल डाल दी। क्या किया? नाक में नथेल डाल दी, नाथ हो गया, नाथ लिया। पहले भारतवर्ष में खास पुरुष होते थे तो जिसको पहली प्रजा बनाते थे, पहली रचना जो रचते थे, परिवार बढ़ाने के लिए तो क्या करते थे है? जिसको पहली रचना बनाते थे माता, उसकी नाक में क्या डाल देते थे है? नथनी डाल देते थे। क्या ये परंपराएं बनाई है? है ये कोई बात हुई है कि शादी की पत्नी बनाई तो उसकी नाक में नकेल डाल दी? अरे जानवरों को नकेल डालना वो तो ठीक है, घोड़े को डालो, वो क्या नाम बैल को डालो, ये क्या बात? स्त्रियों को नकेल डाल देते हैं, ये परंपरा किस उल्लू के पट्टे ने शुरू की थी है? आपने आपने बाप ने हाँ, वो बाप कौन था? शिव बाप कहते हैं मैं तो सुख का सागर हूँ, मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ। जब नाक में छेद किया जाता है, नकेल डाली जाती है, तो जिसकी नकेल डाली जाती है उसको दुख होता है या सुख होता है? दुख होता है। ये बाप का काम है, आत्माओं के बाप का, ऊंचे से ऊंचे बाप का है। हाँ, मनुष्य आत्माओं का बाप हो सकता है, क्योंकि मनुष्य दुखदाई होते हैं, उनका बाप भी दुखदाई होगा। तो जो दुखदाई बाप है, है जो दुखदाई बाप है उसने ऐसा काम किया होगा। कैसा काम? नकेल डालेगा। किसके अंदर नकेल डाली होगी?
पहली रचना। पहली रचना
कौन है? जगदम्बा। नकेल डाल दे, नकेल डाल दे कि नहीं
डाल दे?
वो मानती है ना, जिसकी नाक में नकेल डाली जाएगी वो तो जैसे जैसे चलाओगे वैसे चलेगी कि नहीं?
अंदर से मानती
है,
है? अंदर से मानती है,
अंदर से बात, अंदर से मानती है, अंदर से बातें बनाई हुई है, अंदर से मानती अंतर्यामी हो है? अंतर्यामी पैदा हो गए भाई, शिवो हम बोलो है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने लो। अच्छा, तो जगत पिता है, तो जगत पिता जब प्रैक्टिकल में जगत पिता बनता है, क्या दादा लेखराज ब्रह्मा है तो क्या शरीर से अम्मा है? शरीर से अम्मा है या स्वभाव संस्कार से अम्मा है? हैं? स्वभाव संस्कार से अम्मा है, बाकी शरीर, शरीर तो पुरुष का। ऐसे ही परम ब्रह्म भी क्या होगा जब उसे परम ब्रह्म का टाइटल मिला? परम पिता ने जिसका कोई पिता नहीं, क्या प्रजापिता का भी क्या है? पिता है, और उसका कोई पिता नहीं। उस परम पिता ने जब आशिक होकर अपनी माशूका को रचना बनाया, पहली पहली माता बनाया, तो गीता में नाम दिया है, याद है क्या नाम दिया? अरे अब ब्रह्मा कुमारियों ने तो गीता का नाम नहीं जाना, कहते वो झूठी है, तुमको तो सच्चे रूप में गीता मिलेगी नहीं मिली है? व्याख्या मिली कुछ तो कि नहीं मिली? मिली तो उसमें बताया नहीं है, है? बोला है क्या क्या? अरे मैं मुंह में बोल दिया, मत योनि ही महत ब्रह्म, मेरी योनि रूपा माता महत ब्रह्म है, परम ब्रह्म।
तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं ज्ञान का बीज रूपी गर्भ डालता हूँ। क्या ये श्लोक है गीता में? नहीं याद रहा? मत योनि परम ब्रह्म महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। तो ये परंपरा किसने शुरू की? है? है? परमपिता शिव ने शुरू की। उसी आत्मा को परम ब्रह्म का टाइटल क्यों दिया? है तो पुरुष, परम ब्रह्म का टाइटल क्यों दिया? क्योंकि वही आत्मा है जो ज्ञान का बीज है धारण करती है। पहले पहले ज्ञान का बीज कौन धारण करती है? आत्मा परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म उसी के लिए वाणी में बोला है खास कि तुम बच्चे नंबर वार परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबर वार उतारेंगे कि एक साथ उतारेंगे? तो पहला नंबर कौन? परम ब्रह्म माने प्रजापिता वाली आत्मा पुरुषार्थ करके परम ब्रह्म जिसे कहा गया परम धाम निराकारी धाम, उस निराकारी धाम को अपने अंदर क्या करेगा? उतार लेता है। स्मृति की बात है या प्रैक्टिकल की कोई कोई स्थान है जिसमें जिसको उतार लेता है? है स्मृति की बात है। ऐसी पक्की स्मृति करता है कि दुनिया को उसका संदेश मिलता है, महामंत्र मिलता है। क्या महामंत्र है? मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, मेरे मन में समाजा। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने नहीं कहा? क्यों? उसको अपना मन ही नहीं है, वो तो सदा मन है। कभी बेचैन रहता है क्या? है? कभी बेचैन नहीं रहता। वो इस सृष्टि पर पतित तन में आता है, पतित सृष्टि में आता है, तो भी कभी बेचैन नहीं होता। तो वो जिसके मुख से बोलता है क्या? किसके मुख से बोलता है? है? मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा, तो वो परम ब्रह्म है जिसके मुख से ये महामंत्र पहले उच्चारा जाता है। क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसके मन में क्या है? उसके मन में क्या ऐसी चीज है जिसमें समा जा और 500-700 करोड़ समा जाए? है? निराकारी, निराकारी बिंदी, ठीक है। उसके मन में है, उसके मन में है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अरे बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है, तो कौन सा बाबा है उसके मन में? ब्रह्मा बाबा है? है?
ब्रह्मा ही मन है।
वो कहते शिव बाप मन है, ब्रह्मा ही मन है। घोड़ा कहो, बैल कहो, अड़ियल कहो। बैल कैसा होता है? अड़ियल होता है। तो बैल है, वो बैल मंदिरों में भी दिखाया जाता है,
शिवलिंग के साथ क्या दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? जो अर्घा है ना जलाधारी, उसके बाहर नाली की तरफ मुख दिया हुआ दिखाते हैं, माने उसकी मन बुद्धि रूपी मुख कहाँ धरा रहता है? है नाली में धरा रहता है। वो बड़े से बड़ी नाली क्या है? है कौन माँ? हाँ, जिस जगदम्बा के तन में अंतिम समय में वो चंद्रमा रूपी आत्मा प्रवेश करती है महाकाली में। महाकाली में चंद्रमा दिखाते हैं? नहीं दिखाते? दिखाते हैं। तो वहां उसका मन रखा हुआ है, उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है महाकाली के रूप में, और ऐसा पार्ट बजाता है कि जगदम्बा के लिए साबित होता है प्रैक्टिकल जीवन में राज करेगा खालसा, सारी दुनिया पर राज्य करता है वो आत्मा, उस मात्र शरीर के द्वारा। और वो आत्मा जगदम्बा, जगत की अम्बा किसकी बच्ची है? किसकी रचना है? परम ब्रह्म की रचना है, परम पिता की रचना है। वो परम ब्रह्म भी है और पिता भी है। वो पिता भी है मनुष्य सृष्टि का और माता भी है, दोनों कंबाइंड है। उसकी यादगार क्या है? है? नहीं, अर्धनारीश्वर तो बाद में, पहले उसकी यादगार है लिंग रूप। सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग दिखाया गया, उसमें जो बिंदु दिखाई गई, वो बिंदु किसकी यादगार है? हीरा, शिव की यादगार। शिव पत्थर बुद्धि है। अगर शिव पत्थर बुद्धि होता, पत्थर बुद्धि बनता, तो उसकी यादगार हीरा होता। शिव तो कहता है न मैं पूजी बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो वो हीरा जो पूजा जाता है सोमनाथ के मंदिर में, बिंदु जो पूजा जाता, वो किसकी यादगार है? साकार हीरो पार्टधारी। प्रैक्टिकल जीवन में याद के बल से, क्या याद के बल से, जिसे राजयोग कहा जाता है, इस राजयोग के बल से वो संपन्न स्टेज बनाता है कि उसका पुरुषार्थी रूप पूरा हो जाता है।
वो बस्तर जिसपे वो डायमंड जो लगा हुआ है ना, वो बस्तर किसकी यादगार है?
अभी तो बताया, मैं चोटी पकड़ करके खींचता हूँ, कान पकड़ के नहीं, तुम्हारा सर पकड़ के नहीं खींचता हूँ। विराट रूप दिखाते हैं सृष्टि का? नहीं दिखाते। जब तुम बच्चे पूरे संसार सागर में, जिसे विकारों का सागर कहें, है भव सागर में, दल दल विकारों की दल दल में पूरे ही डूब जाते हो, क्या बचता है? चोटी बचती। उस चोटी में खून होता है, है एड़ी से लेकर चोटी तक, चोटी जहाँ शुरू होती है सर तक खून रहता है, सर के ऊपर जो चोटी है उसमें खून नहीं रहता। और अभी अभी भी बताया, क्या जब टोटल इस सृष्टि का विनाश होता है, उस समय वो विनाशकारी जो गाया जाता है, वो पत्थर बुद्धि टोटल 100% पत्थर हो जाता है या ज्ञानी रहता है? टोटल। और अभी भी पत्थर बुद्धि होगा या ज्ञानी होगा? है ज्ञानी होगा, पत्थर बुद्धि होगा। एक बात पक्की बताओ, है किस बात में? है
इस सृष्टि पर उसको किस साकार सृष्टि को किसी को रास्ता नहीं है।
इस साकार सृष्टि में जो निराकार बाप आया हुआ है शिव ज्योति बिंदु, उसकी कुछ हस्ती है या नहीं? उसके ऊपर विश्वास नहीं?
उसके ऊपर है, वो तो निराकार है ना?
निराकार है। उसने जो साकार में वाणी चलाई उस वाणी के ऊपर विश्वास है कि नहीं? तो कैसे कहते? वाणी पे आस्था नहीं है? वाणी पे आस्था, मुरली से प्यार, तो कैसे कहते आस्था नहीं? खत्म हो गई। वो संकल्प ही नहीं है कोई किसी प्रकार का, अच्छा भी नहीं तो बुरा भी नहीं, बस
बाप समान
बन गए। नहीं, बाप समान नहीं कहेंगे, बाप तो एवर प्योर है, वो विनाशकारी है। और विनाश तभी होता है जब विचारी होता है। कब होता है? जब महाविचारी होता है तब ही विनाश होता है। और महाविचारी जो होता है वो दूसरों के सुख को छीनता है, तब महाविचारी होता है, या बिना छीने महाविचारी होता है? हैं? वो क्या इतना ज्ञान नहीं रखता? ये 16,000 आत्माएं जन्म जन्मांतर किसी की पत्नियां बन के रही हैं? ये बुद्धि में ज्ञान होता है या नहीं? होता है, उसके बावजूद भी है 16,000 पत्नियां रखता है ना। तो बाबा रोना रोते हैं मुरली में, शिव बाप। कौन रोना रोते? शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, खास किससे कहते हैं? है? उसी बच्चे को कहते हैं, छोड़ता ही नहीं। इस एक बात में, एक पॉइंट में वो आत्मा पत्थर बुद्धि है टोटल या नहीं है? और जब बाप ही टोटल पत्थर बुद्धि है तो औरों का क्या हाल होगा? है? है ना? तो बताया कि शिवरात्रि आ रही है। क्या आ रही है? शिवरात्रि के दिन जो शिव की यादगार मंदिर हैं, उनमें जाकर के तुम बच्चे जो पवित्रता की यादगार, परम पवित्र की यादगार, एवर प्योर की यादगार शिवलिंग है। कौन है? शिवलिंग। उसको प्रैक्टिकल जीवन में परम पवित्र कहेंगे या उस शिवलिंग में जो आत्मा बिंदु रूप में है, हीरो हीरा, उसको युक्ति बनाने वाली, युक्ति बताने वाली आत्मा को कहेंगे?
बताने वाली हीरो पार्टनर को
नहीं। उस हीरो पार्टधारी आत्मा को युक्ति किसने बताई? शिव बाप ने बताई। तो जिसने युक्ति बताई वो उसका गुरु हुआ या नहीं हुआ?
हुआ।
नहीं हुआ?
हुआ
हुआ गुरु। तो जो गुरु है वो बड़ा या चेला बड़ा? गुरु बड़ा हुआ ना। और गुरु ये आज्ञा देता है, फरमान जारी करता है, क्या पवित्र बनो, योगी बनो। और 80 साल हो गए, वो यज्ञ के आज से ही कपड़े धोने का काम करता है, प्रैक्टिकल में धोबी। शिव बाप धोता है, शिव बाप की आत्मा धोबी है प्रैक्टिकल में, हैं? वो तो नहीं धोबी है। तो कहता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। क्या बना के जाऊंगा? निरहंकारी बना के जाऊंगा। मैं बाप हूं क्या, तो बपौती मेरी जिस चीज के ऊपर है कि नहीं, किस चीज के ऊपर? अरे जमीन जायदाद के ऊपर बपौती है या धन के ऊपर बपौती है? बाप धनवान है, जमींदार है, क्या है?
भगवान है।
भगवान? हाँ, ज्ञान के ऊपर बपौती है। तो जिस चीज की बपौती है, बाप जब वानप्रस्थी बनता है अपने कार्य व्यवहार को छोड़ता है या नहीं? छोड़ता है। और तब छोड़ता है जब देखता है कि बच्चा बालिग हो गया, लायक हो गया। जिस चीज पर मेरी बपौती है उसको संभाल सकता है, तब ही देगा वर्षा, या बच्चा बुद्धि को वर्षा दे जाएगा? है तो वो विरुद्ध करता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा, अपने समान, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, अखूट धन संपत्ति का मालिक बनाकर जाऊंगा। नहीं तो बनाकर जाता इस जीवन में, संगम युग में एक जन्म की गारंटी है। चरती कला चरती कला चरती कला तेरे बहाने सर्व का भला, उसके आगे के जन्म की गारंटी नहीं है। आगे के जन्म में उस संपूर्ण ज्ञान का वर्षा लेने वाला जो है मनुष्य सृष्टि का पिता, वो जो रचना रचता है, वो रचना चढ़ती कला वाली पैदा होगी या उतरती कला वाली पैदा होती है? चढ़ती कला वाली। हाँ, जो सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा, 16 कला संपूर्ण तो पैदा होगा, लेकिन वो सुख भोगने वाला होगा या नहीं होगा? सुख भोग कर सृष्टि पैदा करेगा या नहीं पैदा करेगा? सुख भोगेगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र साक्षात्कार से तैयार किया, किसने? शिव बाप ने तैयार कराया। उस चित्र में राधा कृष्ण को देखो रचना को, और रचयिता लक्ष्मी नारायण को देखो, जो ज्ञान प्रकाश की दुनिया में खड़े हुए हैं। क्या फर्क दिखाई पड़ता है? सुख भोगने के कार्य में
वो लक्ष्मी नारायण ये इंद्रियों को सुख ले रहे हैं।
हाँ, लक्ष्मी नारायण कोई इंद्रिय का सुख आपस में नहीं ले रहे हैं, अति इंद्रिय सुख ले रहे हैं, कोई भी इंद्रिय का सुख नहीं ले रहे। और उनकी रचना राधा कृष्ण आँखों का सुख ले रहे हैं। वो आँखें शरीर का देह का अंग है, देह विनाशी है, तो देह के अंगों का सुख भी विनाशी है। इसलिए वो आत्मा भी जो पहला पत्ता है सृष्टि का, वो भी 16 कला संपूर्ण लेकर जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है तो 14.25 कला बन करके शरीर छोड़ता है। क्या 16 कला संपूर्ण बन करके शरीर नहीं छोड़ता, तो उतरती कला हुई या चढ़ती कला हुई? और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे ही उतरते जाएंगे या चढ़ते जाएंगे? नीचे ही चढ़ते जाएंगे। तो शिव बाप का जो एक बड़ा बच्चा है उसको देवताओं में बड़ा देवता महादेव का टाइटल दिया, औरों को टाइटल नहीं दिया। एक ही आत्मा मनुष्य सृष्टि में है, देव आत्मा। कोई भी राक्षसी आत्मा नहीं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई प्राणी नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। तो ये बात हमको समझाना है कि शिवरात्रि क्या होती है, क्योंकि साल साल क्रिश्चियन से भी तो मनाते हैं क्या? क्या मनाते हैं? क्रिसमस भी अपने बाप का जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? दूसरे धर्म वाले भी मनाते हैं, तो तुम बच्चे नहीं मनाएंगे हैं? तो मनाएंगे तो ब्रह्मा कुमारियां अभी भी मनाती हैं, हम भी मनाते थे, लेकिन बाप कहते हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे क्या बिना प्रूफ बिना प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार? तो ऐसे ही मना लेंगे क्या शिवरात्रि? पहले समझें फिर समझाना है, फिर मनाना है। बिना समझे सोचे अगर कोई काम करता है तो वो अज्ञानी है ज्ञानी है? अज्ञानी। उसको कहते हैं विस्तार में समझना और विस्तार में दूसरों को समझाने की शक्ति रखना। समझना और समझाना, व्याख्या करना और व्याख्या को दूसरों को समझाना और उस व्याख्या को जीवन में धारण करना। इसलिए शास्त्रों में व्याख्या करने वाले मुनि का नाम कपिल मुनि रखा गया है, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। सांख्य शास्त्र का प्रणेता कौन? कपिल मुनि। उसकी यादगार कंपिल में है, कंपिल नगर उनके नाम के आधार पर बना है। क्या? जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण बना ना, एक मात्रा बड़ी, ऐसे ही कपिल मुनि की रचना कौन सा नगर? कांपिल्य नगर, एक मात्रा बढ़ गई। तो वो व्याख्याकार है, समझू है, समझता है और विस्तार में दूसरों को समझाता है। जो बिना समझे कोई कार्य करे उसको ज्ञानी कहेंगे अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। तो ब्रह्मा के द्वारा जो शिव ने बोला उसमें व्याख्या है, समझने समझाने का विस्तार है, है? ब्रह्मा ने विस्तार से उस बात को समझा और दूसरों को समझाया नहीं? और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने न समझा न समझाया। तो मुख्य बात है ज्ञान सुनना और सुनाना या समझना और समझाना? है समझना और समझाना, सुनना सुनाना बड़ी बात नहीं, मुख्य बात क्या है? समझना और समझाना। समझने का काम मन बुद्धि का है, क्या वाचा का काम वाणी का है। वाक देवी किसको कहा जाता है? सरस्वती जगदम्बा को कहा जाता है। वही सरस्वती जगदम्बा अंतिम जन्म में लंबी जीभ वाली महाकाली वाक देवी बनती है, उसके सामने वाचा में कोई जीत नहीं सकता। उसी की यादगार में जो पूजा स्थल बने हैं सिखों में उनको क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं ना। उन गुरुद्वारों में 24 घंटे क्या चलता रहता है? है गुरुवाणी चलती रहती है। कोई जाकर के उनकी गुणवाणी को काटना शुरू कर दे तो मारकाट मचा देंगे। उनके जो सन्यासी गुरु होते हैं नीले चोंगे पहनने वाले, क्या कहते हैं? अकाली। क्या कहते हैं? अकाली। उनका बहुत मान होता है। तो बताया कि जो महाशिवरात्रि है उस महाशिवरात्रि में जब सारी दुनिया के ऊपर उस काली का राज्य हो जाता है, किसका राज्य? काली माई का राज्य हो जाता है सरस्वती जगदम्बा, तब शिव बाप का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। और शिव बाप अकेला प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेता संसार में, क्या उसका जो बच्चा है प्रजापिता राम बाप, उस राम बाप को भी प्रत्यक्ष करता है। आप कहेंगे राम बाप अभी प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? है अभी प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? हुआ है? प्रत्यक्ष हुआ? एवरलास्टिंग प्रत्यक्ष हुआ? क्यों
नाम नहीं कह सकते
हैं?
अभी नाम नहीं कह सकते।
क्यों नहीं कह सकते?
तो अभी रुलाने वाला है।
रुलाने वाला है? ओह, शिव बाबा कहते हैं भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया है। और ये भाई है वो क्या कहता है? राम जितना रुलाने वाला है उतना और कोई नहीं रुलाने वाला है।
है? जब रावण बनता है तो रुलाएगा।
रावण बनेगा कि बन गया? अभी से गाय के लिए गाली देना शुरू कर दिया बेचारे को। है
अभी तो रमन करने वाला नहीं है ना, सबको सबको तो रमन नहीं करता है ना।
सबकी बुद्धि में रमण नहीं करता,
करता रमन नहीं।
इनकी बुद्धि में रमण नहीं करता, क्योंकि बाबा ने बोला है जो पतित पावन बाप को मानते ही नहीं वो पतित पावन बाप को सीताराम कह के बुलाते भी नहीं। जो पतित पावन बाप को सीताराम को मानते हैं वो बार बार बुलाते भी हैं। आ जाओ, साल पूरा हो गया, दो साल हो गए, आ जाओ, बुलाते हैं कि नहीं? मन में बुलाते हैं या ढोल मजीरा बजा के बुलाते हैं? हाँ तो बताओ, योगी लोग रमण नहीं करते उसमें?
करते हैं, सबके लिए नहीं।
सबके लिए नहीं,
बच्चों के लिए तो राम है। बच्चों के लिए तो राम है।
तो दुनिया के लोग थोड़े ही योगी हैं। योगी बाप के बच्चे हैं जिन्होंने पहचाना, या दुनिया वाले योगी हैं?
बाप के बच्चे,
बाप के बच्चे। लेकिन राम को अभी पक्का पक्का इसलिए नहीं पहचाना कि आज पहचानते हैं और कल विरोधी बन जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, यज्ञ के आदि में खून से भी लिख करके देते थे, और अभी अंत में भी स्टाम्प पेपर पर लिखने के लिए तैयार, नोटरी करने के लिए तैयार, लिख के देते भी हैं। आज लिख के देते हैं और कल फांव हो जाते, मर जाते। बाप के बच्चे रहते ही नहीं, दूसरों की बातों में चले जाते, या मनमत सुनाने लग पड़ते, या मनुष्य की मत को मान लेते। देर की देर विष्णु पार्टियां निकल रही हैं कि नहीं? है वो सब बाप के बच्चे बने थे या नहीं बने थे? निश्चय पत्र लिख के दिए थे या नहीं दिए थे? सबने निश्चय पत्र लिख के दिए थे, बाद में अनिश्चय पैदा हो गया। तो संगम युग में निश्चय बुद्धि बने तो बाप के बच्चे बने, जिंदा हुए, जन्म लिया, और अनिश्चय बुद्धि बने तो मृत्यु हो गई, नहीं हुई। तो मृत्यु लोक के वासी हैं हम सब या अमर लोक के वासी हैं? अभी भी कहाँ के वासी हैं? अभी भी मृत्यु लोक के वासी हैं। एक पेयर है जिसके लिए बोला कि 10 वर्ष में इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा, वही नारायण वाली आत्मा जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं तो नाम देते हैं ब्रह्मा। पहले पहले क्या नाम देते? ब्रह्मा। जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। वो ही ब्रह्मा, पहला पहला ब्रह्मा 60 साल से 100 साल हो जाता है, 40 साल पूरे होते हैं 76 में, तो मृत्यु लोक उसका खत्म हो जाता। क्या शुरू हो जाता? अमर लोक शुरू हो जाता। अमर लोक प्रैक्टिकल में शुरू हो जाता या मन बुद्धि के अंदर शुरू हो जाता? मन बुद्धि के संकल्पों में स्वर्ग महसूस करता या नरक महसूस करता है? स्वर्ग महसूस करता। वो मन बुद्धि की बात है, राजधानी स्थापन होने की प्रैक्टिकल में बात नहीं है। और अभी 2018 में प्रैक्टिकल में 8 का संगठन निकलेगा, जो निकलेंगे वो अनुभव करेंगे राजधानी का, जो नहीं निकलेंगे वो राजधानी का अनुभव भी नहीं करेंगे। जिनके लिए अव्यक्तवाणी में पहले से ही बोल दिया, क्या बाप के प्रत्यक्ष रावत प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात बोल दी, जो देखे इन आँखों से, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसके मुख से अनायास ही क्या निकले? मेरा बाप आ गया। फिर कल ही कहेगा ना चला गया, एवरलास्टिंग आ गया कि चला भी जाएगा? एवरलास्टिंग आ जाएगा। वो राजा जनक के लिए, जनक का नाम ही है सीता का बाप। किसका बाप? तुम सब क्या हो? सीता है। सब सीताओं का बाप। जन माने जन्म, का माने करने वाला, जनक माने जन्म देने वाला। तो सारी मनुष्य सृष्टि को जन्म देने वाला कौन हुआ? जनक। वो जनक जिसके लिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना, उस अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार जन्म लेता है और सारा संसार उसी में समा जाता है। क्या? जड़ और जंगम, चैतन्य हो प्राणी या जड़ हो पृथ्वी या शरीर या जड़, वायु अग्नि आकाश, वो सब उसी एक से पैदा होते हैं और उसी एक में समा जाते हैं। कैसे समा जाते हैं? मन मना भव, मेरे मन के संकल्प में समा जा। मेरे मन में क्या संकल्प है? एक शिव ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। तो सभी किस स्वरूप में समा जाएंगे? ज्योति बिंदु स्वरूप में समा जाएंगे। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी नहीं बचेगी जो उस बिंदु रूप में न समा जाए। और हर आत्मा जब उस एक ही ज्योति बिंदु में समा जाएगी तो उनके संकल्प अलग अलग होंगे या एक ही हो जाएंगे? है? एक ही संकल्प हो जाएगा सबका। क्या? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु। फिर नंबर बार फिर निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? उसी धाम से निकलेंगे जिसके लिए बोला है तुम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने तुम बच्चे नंबरवार हो तो नंबरवार बच्चों में से कोई अव्वल नंबर बच्चा है जो परम धाम को पहले पहले अपने मस्तक में उतारता है और उसी परम धाम में सभी मनुष्य आत्माएं स्मृति के आधार पर समा जाती है और फिर नंबरवार उतरेंगी या एक साथ उतरेंगी। 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं इकट्ठी निकल पड़ेंगी या धीरे धीरे उतरेंगी? धीरे धीरे उतरेंगी। पहला पीढ़ी राधा कृष्ण सतयुग के उनका जितना भी जन्म काल होगा, जीवन काल 150-250 जो भी हो, अंत तक वो आत्माएं उतरती रहेंगी और बच्चों को जन्म देती रहेंगी। तो अंत में जाकर के पहली पीढ़ी के अंत में 9 लाख की आबादी पूरी हो जाएगी। ये बात समझ में नहीं आती है? समझ में आनी चाहिए।
4.5 से 9 लाख कैसे बनते?
दो जन्म देने वाली आत्माएं और दो लेने वाली आत्माएं। जो जन्म लेने वाली आत्मा है जैसे राम वाली आत्मा और सतयुग का पहला पत्ता, जन्म लेने वाली आत्मा दोनों एक ही शरीर में लेकर के रह करके पुरुषार्थ करती है? नहीं करती है। एक ही शरीर में संपन्न होती है, जो बोला बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है तो वैसा ही है। ये बेहद का जन्म है और वहां हद का जन्म होगा शरीर का। तो इसी तरह एक पेयर जैसे राधा कृष्ण और राम सीता, चार आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरेंगी। नंबर बार पहले माता पिता और फिर बच्चे, बच्चों की आत्मा, और उतर करके जन्म लेंगी। उसी तरह दूसरी आत्माएं भी जो हैं माता पिता और उनके बच्चे उतरते रहेंगे और जन्म लेते रहेंगे। 9 लाख की आबादी पूरी होगी और दूसरा नारायण गद्दी पर बैठ जाए। ओम शांति।